ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरो न वैष्णववांश्च जातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्ययेवश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे राधे मेरी स्वामिनी जन्म मोह दीजियो। श्री वृंदावनवा राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है, सोते रो जय राधा माधव कुंज बिहारी,
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 जय राधा माधव कुंज बिहारी।
गोपी जन वल्लभ गिरि वरदारी,
गोपी जन
गोपी जन वल्लभ गिरि वरदारी,
गोपी जन वल्लभ गिरि वरदारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
यशोदानंदन ब्रज जनरंजन,
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 यशोदानंदन ब्रज
जनरंजन, यमुना तीर वन चारी, यमुना तीर वन चारी,
यमुना तीर वन चारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा
Oh,
वासुदेवाय
ॐ नमः भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमः भगवते
श्रीमद् भागवतम स्कंद सात अध्याय छे श्लोक क्रमांक एक
अथ षष्ठ अध्याय
अथ षष्ठ अध्याय
श्री प्रह्लाद उवाच
श्री प्रह्लाद उवाच
कौमार आचरेत् प्राज्ञो
कौमार आचरेत् प्राज्ञो
धर्मान् भागवतानिह
धर्मान् भागवतानिह
दुर्लभं मानुषं जन्म
दुर्लभं मानुषं जन्म
तदप्यध्रुवमर्थदम्
तदप्यध्रुवमर्थदम्
यथा हि पुरुषस्येह
यथा हि पुरुषस्येह
विष्णुपादोपसर्पणम्
विष्णुपादोपसर्पणम्
यदेश सर्वभूताना
यदेश सर्वभूताना
प्रिय आत्मेश्वर सुह
प्रिय आत्मेश्वर सुह
सुखमेन्द्रियकं देत्या
सुखमेन्द्रियकं देत्या
देहयोगेन देहिना
देहयोगेन देहिना
सर्वत्र लभ्यते देवा
सर्वत्र लभ्यते देवा
यथा दुःखमयत्नत
यथा दुःखमयत्नत
तत्प्रयासो न कर्तव्यो
तत्प्रयासो न कर्तव्यो
यत आयुर्व्यय परम्
यत आयुर्व्यय परम्
न तथा विन्दते क्षेमम्
न तथा विन्दते क्षेमम्
मुकुन्द चरणाम्बुजम्
मुकुन्द चरणाम्बुजम्
बोलिए
निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस अन्नीपप्रसुञ्छविं प्रोद्विर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि युचे वदन्तम् नृत्यन्तं द्रुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्त भोर्वेतलं गायन्तं निजपार्षदे परिवृतं श्रीगौरचन्द्रम् श्रीगौरचन्द्रं नमः वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलधरो पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने यस्या कदा पि वसनान् चलकेलनोत्थ धन्याति धन्य पवने न कृतार्थमानि योगी मधुरगमगति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोऽस्तु वृषभा नुभो दिशे प्रचोदिताय न पुरा सरस्वती वितन्वता च स्यसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा दुर्भोत्किलास्यत समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदता भुर्देर्महतभी यैमा पुरो निर्मायशेते यदमोषपूरुष भुङ्क्तेर्गुणनशो रसषोडशात्मक सोलङ्कश्रेष्ठ भगवान् वचान्
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस सप्तम और अंतिम सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो अमृत के समान पवित्र है, श्रीमद् भागवत कथा को कथामृत कहा गया है। भक्तों, दो प्रकार का अमृत होता है, एक है स्वर्ग में रहने वाला अमृत और दूसरा है कथा अमृत। स्वर्ग में जो अमृत है, आज से कई वर्ष पूर्व देवता और दानों द्वारा समुद्र मंथन हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया और इस समुद्र में कई सारी जड़ी बूटी लता पता पेड़ इत्यादि डाले गए और वह समुद्र का मंथन करके समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से समुद्र से निकला हुआ अमृत भगवान ने समस्त देवताओं को पिलाया, फिर भी देवता अमर नहीं हुए। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को देवताओं को पिलाने के बाद भी देवता अमर नहीं हुए। इसलिए वही भगवान विष्णु कलयुग में वेदव्यास जी के रूप में प्रकट हुए। जैसे वहां पर भगवान विष्णु ने समुद्र का मंथन किया, समुद्र में समस्त जड़ी बूटी इत्यादि डाले गए, वैसे ही कलयुग में वही भगवान विष्णु वेदव्यास जी के समस्त वेद शास्त्र और पुराणों का मंथन किए। जैसे उस समुद्र का मंथन करके अमृत प्रकट किया, वैसे श्री वेद व्यास जी ने इस कलयुग में वेद और उपनिषद और पुराणों का मंथन करके श्रीमद् भागवत कथा अमृत प्रकट किया। भगवान विष्णु ने समुद्र से जिस अमृत को प्रकट कराया वह अमृत पीकर देवता अमर नहीं हो सकते हैं, परंतु बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो अमृत हमारे इस पृथ्वी लोक पर है जिसे कथा अमृत कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस कथा अमृत का पान कर लेता है, इस भागवत कथा अमृत का पान करने से व्यक्ति अजर और अमर बन जाता है, उनकी मृत्यु नहीं होती है। तो वेद व्यास जी ने भागवत कथा अमृत को प्रकट किया और सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को पान कराया और सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से आज विश्व भर में ये भागवत कथा सब लोग जानते हैं, सुनते हैं। तो भागवत कथा अमृत की अपार असीम महिमा है। भागवत कथा सुनने से व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है, अमर हो जाता है। कभी कभी हमारे मन में प्रश्न होता है क्या भागवत सुनकर वास्तविक व्यक्ति अमर हो जाता है? कई सारे भक्त भागवत सुनते हैं परंतु उनकी भी मृत्यु होती है, और जो भागवत नहीं सुनते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनकी भी मृत्यु होती है। तब भक्ति करने से भागवत सुनने से क्या लाभ? बहुत अच्छा प्रश्न है। भागवत सुनने वाला भक्ति करने वाला भी मरता है और भजन नहीं करने वाला पाप करने वाला भी मरता है। यदि दोनों को मरना है तो भागवत सुनने की और भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? भक्तों, हमारी दृष्टि में लग सकता है कि भक्त और अभक्त दोनों मर रहे हैं, परंतु दोनों के मरने में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं, मान लीजिए 7 माले की बिल्डिंग में चौथे माले पर एक व्यक्ति रह रहा है और छठे माले पर एक व्यक्ति रह रहा है। चौथे माले पर जो व्यक्ति रह रहा है उस दिन उनका विवाह है, शादी होने वाली है, और छठे माले पर जो व्यक्ति रह रहा है वो बहुत बड़ा स्मगलर है, बहुत बड़ा चोर है, और स्मगलर होने के कारण पुलिस वालों ने बहुत पता लगाया और पता लगाकर उसे पता चला कि इस बिल्डिंग के छठे माले पर चोर रह रहे हैं। अब देखिए, चौथे माले पर एक व्यक्ति का विवाह हो रहा है, छठे माले पर एक चोर रहा है, चोर रह रहा है, जिनके बारे में पुलिस को पता चल गया है। चौथे माले पर जिसका विवाह होने वाला है उनके घर पर बारात आ रही है, बाराती सब लोग तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे बाराती हैं, और छठे माले पर जो चोर रह रहा है उनके घर पे भी बारात आई है। दोनों के घर पर, चौथे माले और छठे माले दोनों के घर पर बारात आई है, पांचवे माल वाला यदि कहे कि दोनों के घर पर बारात है, दोनों खुश है, दोनों बराबर है। परंतु भक्तों, दोनों की बारात में अंतर है। जिसका विवाह होने वाला है वे बहुत प्रसन्न है, क्योंकि विवाह के दिन दूल्हे राजा कहा जाता है। भले जीवन भर कोई चाय का भी नहीं पूछता है, परंतु विवाह के दिन तो 10-15 बार पूछते हैं, क्या चाहिए, क्या लाऊं आपके लिए, क्योंकि जीवन में एक दिन व्यक्ति राजा बनता है और सब लोग उनके चरणों में रहते हैं, सब लोग वाह वाह करते हैं, आओ आइए आइए हमारे घर पर, 10-15 लोग आगे पीछे घूमते हैं क्योंकि दूल्हे राजा है। तो जिसका विवाह होने वाला है, हो रहा है, वो बहुत प्रसन्न है, खुश है, और छठे माले पर भी बारात आई है, बहुत सारी गाड़ी लेकर भी आई है, परंतु क्या वो खुश है? नहीं, वे दुखी है। क्यों? क्योंकि वे भी, उसके घर पर भी बारात आई है, परंतु वे जो बारात है वे बारात आगे चलकर दुख देने वाली है। दोनों घर से निकले हैं और दोनों बारातियों के साथ निकले हैं, परंतु जो विवाह करने के लिए जा रहा है वे बहुत खुश है, और जिसको पुलिस लेकर जा रही है वे बहुत दुखी है, क्योंकि पुलिस जेल में लेकर जाएगी और वहां पर दंडे मारकर बहुत पीटेगी। तो दोनों लोग घर से निकले हैं, वैसे ही भक्त की भी मृत्यु होती है और अभक्त की भी मृत्यु होती है, परंतु दोनों में इतना अंतर होता है। भक्त की जब मृत्यु होती है तो वह मृत्यु नहीं, वह तो मृत्यु के ऊपर उनकी विजय होती है, क्योंकि भक्त इस देह को छोड़कर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। भागवत सुनने वाला, भजन करने वाला व्यक्ति देह को त्याग कर भगवान का धाम प्राप्त करने वाला है, इसलिए वे बहुत प्रसन्न होता है। परंतु जो भक्ति नहीं करते हैं, भागवत नहीं सुनते हैं, वे लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं और उसे लेने के लिए भगवान के पुलिस अर्थात यमदूत आते हैं, इसलिए वे लोग बहुत दुखी होते हैं। भजन करने वाले और नहीं करने वालों में कितना अंतर है। इसलिए जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि वे लोग अमर हैं, कभी मरते नहीं हैं। तो भागवत कथा अमृत का श्रवण करके व्यक्ति वास्तव में नवमृत हो सकता है। तो ऐसे ही भागवत की कथा हम लगातार 7 दिन से सुनते आए हैं। इसके पीछे एकमात्र ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, जिनकी अनुकंपा के कारण आज हम सब लोग ऐसे घोर कलयुग में भी एक साथ एकत्रित होकर श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 6वें अध्याय की कथा में हम सब लोग पहुंचे हैं। आगे के अध्याय के अंतिम श्लोकों में कल हम लोगों ने श्रवण किया, प्रहलाद महाराज गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। गुरु का नाम षंड और अमरक है। गुरु की विशेष निगरानी है कि प्रहलाद को कोई विष्णु भक्त आकर उपदेश न करे। गुरुगण धर्म अर्थ और काम की शिक्षा दे रहे हैं और प्रहलाद महाराज इस भौतिक शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते एक दिन की बात, नारद मुनि राजसूय सभा में युधिष्ठिर महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात, प्रहलाद महाराज गुरुकुल में पढ़ रहे थे और एक दिन प्रहलाद महाराज के दोनों गुरु षंड और अमरक अपने घर का काम करने के लिए, गृह काम करने के लिए गुरुकुल को छोड़कर कुछ घंटों के लिए अपने घर चले गए। और जब ये षंड और अमरक अपने घर पर चले गए तो यहां पर सभी बालक अपनी मस्ती में खेलने लगे। बालक का स्वभाव होता है खेलना, बालक की स्वाभाविक आसक्ति होती है खेलने में। तो ये सभी असुरों के पुत्र, असुर बालक वहां पर खेलने लगे, परंतु प्रहलाद महाराज का मन खेलने में नहीं लगता था। अपने जीवन का एक क्षण भी वे व्यर्थ नहीं गवाते थे। प्रहलाद महाराज सभी बालकों को खेलते हुए देखकर हृदय में बहुत दुख हुआ, करुणा उमड़ पड़ी कि इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और यह बालक, यह सब मेरे मित्र अपने जीवन का अमूल्य समय खेलने कूदने में गवा रहे हैं। हृदय में करुणा उमड़ी और करुणा के कारण प्रहलाद महाराज ये सभी बालकों को उपदेश देने के लिए इच्छा हुई। वास्तव में प्रचार करने का यही मूड है। प्रचार करने के पीछे एकमात्र लक्ष्य, एक मूड होना चाहिए कि संसार के लोगों के ऊपर करुणा होनी चाहिए। इसलिए भागवत के प्रसिद्ध श्लोक में सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहते हैं, यह स्वानुभाव मखिलम श्रुति सार मेकम अध्यात्म दीप मतिति तिर्षताम तमोंधम संसारिणाम करुण याह पुराण गुह्यम तम व्यास सोन मुपयामि गुरुर मुनिना। कते संसारिणाम करुण याह पुराण गुह्यम। सुखदेव गोस्वामी भागवत क्यों सुनाए, कते संसार के लोगों के प्रति करुणा उमड़ पड़ी। प्रहलाद महाराज के हृदय में करुणा है और करुणा के कारण वे अपने सहपाठी बालकों को उपदेश देने के लिए सोच रहे हैं। तुरंत प्रहलाद महाराज एक वृक्ष के ऊपर चबूतरा बना हुआ था, वहां पर खड़े होकर सभी बालकों को बुलाने लगे। हे मेरे मित्रों, हे बालकों, यहां पर आओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। नारद मुनि कहते हैं, प्रहलाद महाराज का आचरण बहुत अच्छा था और प्रहलाद महाराज के आचरण के कारण सभी बालक प्रहलाद महाराज की बात मान लिए और सभी बालक प्रहलाद की बात को सुनकर उनके पास आए और आकर वहां पर बैठ गए। प्रहलाद महाराज थोड़े ऊपर बैठे हैं, बालक नीचे बैठे हैं और प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उपदेश सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। उपदेश प्रारंभ करने से पहले हम सबको यह बात ध्यान में होनी चाहिए, उपदेश सुनाने वाला बालक 5 साल का है जो नारद मुनि का शिष्य है और उपदेश सुनने वाले उन्हीं के मित्र सहपाठी बालक जो 4, 5 या 6 साल के हैं। प्रहलाद महाराज अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं भागवत के 6ष्ठ अध्याय के प्रथम श्लोक में। श्री प्रहलाद उवाच, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद महाराज, श्री प्रहलाद उवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, केवल प्रहलाद उवाच भी कह सकते थे परंतु प्रहलाद महाराज के आगे श्री लगा रहे हैं क्योंकि श्री का अर्थ होता है सौभाग्य, श्री का अर्थ होता है धन, श्री का अर्थ होता है भक्ति, श्री का अर्थ होता है ज्ञान। प्रहलाद महाराज ये सभी से अलंकृत थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और भक्ति में उच्च सीमा में पहुंच चुके थे, इसलिए प्रहलाद महाराज को श्री कह रहे हैं। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, क्या कहा, कहते हैं प्राज्ञो भागवत धर्मान इह कौमार। हे मेरे प्रिय मित्रों, इस संसार में बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान पुरुष भागवता भगवान को प्रसन्न करने के लिए धर्मान आचरित। हे मेरे मित्रों, इस संसार में बुद्धिमान पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए धर्म का आचरण करता है, आपकी तरह खेलता नहीं है। पहली बात प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, सबसे पहले शब्द कर रहे हैं प्राज्ञ। ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी और प्राज्ञ का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूपेण ज्ञानी, अर्थात बुद्धिमान। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं इस संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति है भागवता भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्तिमय आचरण करता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए धर्म का आचरण करता है, धर्मान आचरित। वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र कार्य है भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। इस संसार में और जितने भी उपाय हैं, कुछ लोग तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, परंतु भगवान को संपूर्ण तरीके से यदि प्रसन्न करना है तो कहते हैं धर्मान आचरे, धर्म का आचरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। और यह भक्ति कहते हैं इह, इसी जन्म में भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन ही भक्ति करने के लिए सुलभ है। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता इह, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इह का अर्थ होता है इसी जन्म में। भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वोच्च कार्य क्या है, कहते हैं भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति का अर्थ अगले अध्याय में आप सब लोग समझ चुके हैं। भगवान की भक्ति नौ प्रकार की है, नवदा भक्ति जो प्रहलाद महाराज ने वर्णन किया, और नवदा भक्ति में भी श्रेष्ठ है श्रवण और कीर्तन। भगवान की कथा सुनना और उनके नाम का कीर्तन करना, इसे भगवान की भक्ति कहते हैं। और यह भगवान की भक्ति कहते हैं इह, इसी मनुष्य जन्म में सबको कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिस मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। मनुष्य जीवन के अलावा और जितने भी शरीर हैं, ये सभी शरीरों में भक्ति करने की कोई फैसिलिटी नहीं है। मनुष्य के अलावा और जितने भी व्यक्ति हैं, वे केवल भोग कर सकते हैं। इस संसार में देखा गया है कि मनुष्य जन्म भजन करने के लिए मिला है, परंतु भजन न करते हुए सब लोग भोग कर रहे हैं। सब लोग भोगों में लगे हैं, परंतु भोग पशुओं को करना चाहिए, मनुष्य को नहीं। भोग करने के लिए यह शरीर नहीं बना है, क्योंकि भोग पशुओं के शरीर में अच्छा हो सकता है, मनुष्य के शरीर में ठीक से नहीं हो सकता है। इस संसार में मनुष्य देह प्राप्त करके कुछ लोग भोग करते हैं, परंतु कितना कर सकते हैं? मनुष्य से अच्छा भोग तो प्राणी कर सकते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, कितना भोजन कर सकते हैं? एक रोटी, दो रोटी, पांच, दस रोटी। परंतु मनुष्य से अच्छा भोग हाथी, एक प्राणी कर सकता है जो कई टन भोजन खाता है। कुछ लोग सोचते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके, मनुष्य जीवन सोने के लिए मिला है, सोते रहते हैं, सोने में ही आनंद उठाते हैं। परंतु आप ज्यादा से ज्यादा कितना सो सकते हैं? पहली बात तो सोने के लिए इस संसार में किसी मनुष्य के पास समय नहीं है। परंतु आप देखिए, पशु जब चाहे तब सो सकते हैं, क्योंकि यह भोग भोगना पशुओं का काम है, मनुष्य का नहीं। और मनुष्य यदि भोग भोगत ना भी चाहे, फिर भी वह ठीक तरीके से भोग भोगत नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं यह मनुष्य जीवन बच्चे पैदा करने के लिए मिला है, संभोग करने के लिए मिला है। परंतु मनुष्य कितना संभोग कर सकता है, कितना भोग भोगत सकता है? इस संसार में देखा गया है कि इस कलयुग में सब लोग पुरुष और स्त्री के संग को सबसे बड़ा भोग मानते हैं, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा भोग मानते हैं। परंतु विचार करो इस बात पर कि इस संसार में सब लोग जिस भोग को सबसे बड़ा भोग मानते हैं, वह भोग प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी इस भोग का आनंद कितनी मिनट तक उठा सकता है? कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, यह संभोग का आनंद केवल 2-5 मिनट के लिए उठा सकता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है। उससे तो अच्छे कूदते हैं, भोग भोगते हैं तो एक साथ 10-15 पुत्रों को जन्म देते हैं। मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य से बेटर भोग आप पशु के शरीर में भोग सकते हैं। जैसे सुअर है, रात दिन वह भोजन करने में पड़ा रहता है। जैसे एक चिड़िया है, चिड़िया रास्ते में चल रही है और अचानक ट्रक आ गया तो वह फर्र करके उड़ सकती है। परंतु हम खड़े हैं तो तुरंत एक्सीडेंट हो सकता है। तात्पर्य यह है, मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं है, मनुष्य जीवन भजन करने के लिए। सवाक ययातस्य गुणान गृणीते, भगवान ने यह वाणी दी है, क्यों? भगवान का गुणगान करने के लिए। करोच तत्कर्म करो मनुष्य, भगवान ने यह कर यह हाथ दिए है, क्यों? उनके सामने जोड़ने के लिए। भगवान ने यह मन दिया है, क्यों? उनका चिंतन करने के लिए। भगवान ने यह जीवन दिया है, क्यों? उनकी भक्ति करने के लिए। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भजन भक्ति नहीं करते हैं, वास्तव में वो मनुष्य मनुष्य नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे तो मुर्दे के समान है। जिन हरि हृदय भगति नहीं आनी, जीवन शव समान सो प्राणी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं हुई तो उनका जीवन शव के समान है, एक जिंदा लाश के समान है। हो सकता है कि वह सांस ले रहा है, परंतु जीती लाश के समान उनका जीवन है जो लोग भजन नहीं करते। आप कल्पना करो, एक दृश्य आपके सामने है, कोई व्यक्ति मर चुका है और उसकी शमशान यात्रा जा रही है, और चलते चलते यदि वो व्यक्ति रास्ते में बैठा हो जाए तो जितने भी लोग उसे उठाने वाले हैं वहां से तुरंत भाग जाएंगे कि अरे भूत आया, भूत आया। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भगवान का भजन नहीं करते हैं वे वैसे जिंदा लाश के समान है, भूत के समान। इसलिए मनुष्य जीवन भोग भोगतने के लिए नहीं, भजन करने के लिए मिला है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवता इह। भगवान को प्रसन्न करने के लिए धर्म का आचरण इह, इसी मनुष्य जन्म में सबको करना चाहिए। तो मानो किसी ने पूछा कि यह भक्ति तो ठीक है, इस जन्म में हम लोग करेंगे, क्योंकि वहां पर जो असुर बालक थे वे भी बुद्धिमान होंगे। मान लीजिए किसी ने पूछा कि प्रहलाद महाराज आप तो बहुत सुंदर बात बताएं, मनुष्य जीवन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति का आचरण हम लोग करेंगे, परंतु यह भक्ति अभी से करने की क्या आवश्यकता है, ये तो बूढ़े होकर हम करेंगे। संसार में सब लोग कहते हैं ना कि आप तो भी बालक हो, खेलने कूदने की उम्र है, बूढ़े होकर करना। तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, कुमार आचरे, भगवान की भक्ति कुमार अवस्था में ही करनी चाहिए, बूढ़े होकर भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कुमार अवस्था में, बाल्य अवस्था में बालक की बुद्धि कोमल होती है। बाल्य अवस्था में बालक की बुद्धि कोमल घास के तरह होती है। आप देखिए, जो हरा घास है, जो कोमल घास है, उसे कैसे भी मोड़ोगे तो वे मुड़ जाएगा, परंतु यदि सूखा हुआ घास है, यदि उसे मोड़ने का प्रयास करोगे तो वह टूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार बाल्य अवस्था में बालक की बुद्धि नरम होती है, इसलिए उसे जैसे भी जहां भी डाइवर्ट करना चाहो हो सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार आचरित, भगवान की भक्ति कुमार अवस्था में ही करनी चाहिए। यहां कुछ लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि बुढ़ापे में भक्ति करे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या हम बूढ़े होकर भक्ति नहीं कर सकते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं, बूढ़े होकर आप कैसे भक्ति करोगे? कहते हैं, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो बुढ़ापे का वर्णन करते हैं, दृष्टिर नश्यते, एक बूढ़ा व्यक्ति ठीक से देख नहीं सकता है, वर्ध तेज बधिरता, ठीक से सुन नहीं सकता है, दशनम वीनम उनके दांत नहीं होते हैं, वाक्यम नैव शृणोति, दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं, बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है। बूढ़ा व्यक्ति ठीक से टॉयलेट भी नहीं जा सकता है, वो भजन भक्ति कैसे कर पाएगा? इसलिए जो भी भजन भक्ति है ये कुमार अवस्था में और इसी मनुष्य जीवन में करनी चाहिए। क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, क्योंकि यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। भक्तों, जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर की वैल्यू हम लोग नहीं समझ रहे हैं। यदि हमें इस शरीर की वैल्यू समझ में आ जाए तो हम आज और अभी से ही भक्ति शुरू कर देंगे। इस शरीर की दुर्लभता किसी को नहीं पता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, हमें जो ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना, ये बहुत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? पुराणों में वर्णन है इस संसार में 84 लाख की योनि गिनाई गई है। 84 लाख के शरीर होते हैं और 84 लाख के शरीर के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। वर्णन है जलजा 9 लक्षाणी, पानी में जल में 9 लाख प्रकार के जीव होते हैं। जैसे एक वेल मछली है, एक कछुआ है, वैसे 9 लाख प्रकार के जीव जल में होते हैं अलग अलग, और एक प्रकार के जीव अनेक होते हैं। 9 लाख केवल प्रकार है। 9 लाख प्रकार के जीव जल में होते हैं। स्थावरा लक्ष्य विशंति, 20 लाख प्रकार के स्थावर होते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि, जो एक जगह पर खड़े हैं, कहीं हिल नहीं सकते हैं। अब देखिए, मैं ये गिनती गिना रहा हूं, हम सब लोग ये सभी योनि से पास होकर आए हैं। हम सब लोग एक बार वेल मछली बने, फिर कछुआ बने, फिर केकड़ा बने, फिर शार्क बने, फिर ये मछली वो मछली मगर बने, वैसे 9 लाख प्रकार का शरीर हम सब ने जल में धारण किया और छोड़ा, और सभी शरीर में जन्म लेना, मृत्यु होना, दुख आना, रोग आना, सभी शरीर में 9 लाख प्रकार के जन्म जल में लिए और छोड़े। तत्पश्चात 20 लाख प्रकार का शरीर पेड़ और पौधे के रूप में मिला, कभी आम का वृक्ष, कभी चीकू का, कभी और कभी कभी कोई वट वृक्ष यदि बन जाए तो उनकी उम्र 500-500 साल तक होती है। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है, एक ही जगह पर खड़ा रहना है, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, उस जगह से हिलना नहीं है। आज हमें ठंड लगती है तो हम कंबल ओढ़ लेते हैं, परंतु यह पेड़ इतना परवश है, यह वृक्ष इतने परवश हैं कि वे एक जगह पर हिल भी नहीं सकते। और इस प्रकार से पेड़ और पौधे 20 लाख प्रकार हमने जन्म लिए और हम मर गए। क्रिमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के जीव, छोटे छोटे चींटी और कीड़ों के रूप में, जैसे गटर के कीड़े होते हैं, हमने 11 लाख प्रकार के शरीर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के रूप में बदला। और तत्पश्चात पक्षीणाम 10 लक्षाणाम, 10 लाख प्रकार के पक्षी बने जो आकाश में उड़ते हैं, और 10 लाख प्रकार के पक्षी बनने के बाद 30 लक्षाणी पशव, 30 लाख प्रकार के 4 पैर पर चलने वाले हम सब लोग बने। हम कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बैल, ये सब योनि में हम सब लोग घूम कर आए हैं। और इस प्रकार से 80 लाख प्रकार की योनि जब पास होती है, 80 लाख प्रकार के जन्म लेकर हम मरते हैं, तब जाकर यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। कल्पना करो कितना दुर्लभ है। 84 लाख प्रकार की योनि काटने के बाद यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। एक एक योनि में 100-100 साल, 500-500 साल, इसका अर्थ है करोड़ों वर्ष के बाद तब जाकर यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, इसलिए हमारे शास्त्र में, आचार्य में, वेदों ने इस मनुष्य जीवन को बहुत दुर्लभ कहा है, और भगवान तो इसे सुदुर्लभम कहते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह मनुष्य जीवन केवल दुर्लभ ही नहीं, सुष्ठु रूपेण दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? अध्रुवम। एक तो 84 लाख योनि काटने के बाद, करोड़ों वर्षों के बाद मनुष्य जीवन मिला, वह भी कैसा मिला? कहते हैं अध्रुवम, जिसका कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल डेलिकेट, कभी भी मर सकता है, ऐसा नहीं है कि अब मनुष्य जीवन मिल गया तो हजारों वर्ष तक जिएंगे, नहीं नहीं। अध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ होता है निश्चित, अध्रुव का अर्थ होता है अनिश्चित। यह मनुष्य जीवन कैसा है, कभी भी हम मर सकते हैं, कभी भी कहीं भी समय कैसे भी इस मृत्यु लोक में हम मर सकते हैं, इसीलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहा गया है। बाकी सब लोग को मृत्यु लोक नहीं कहा गया, यद्यपि बाकी के सब लोग में भी सब लोग मरते हैं, परंतु इस पृथ्वी पर व्यक्ति कहीं भी कभी भी और कैसे भी मर सकता है, इसलिए इस पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। तो कई कई वर्षों के बाद, करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद यह मनुष्य देह प्राप्त हुआ और उसमें भी अध्रुवम, बहुत कम वर्ष के लिए। कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन, कहते हैं 100 साल तक मनुष्य जीता है, परंतु आज कौन 100 साल तक जीता है। इस बंबई जैसे धूल और धुएं में रहकर 60-70 साल भी यदि कोई जी ले तब भी वह बहुत भाग्यशाली माना जाए। केवल गिने चुने 60-70 साल के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए इस मनुष्य जीवन में भजन कर लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ भजन केवल इस मनुष्य जीवन में ही कर सकते हो। अर्थदम, इस श्लोक में अंत में प्रहलाद महाराज कहते हैं अर्थदम, ये मनुष्य जीवन ही सभी अर्थ प्रदान करने वाला है, सभी पुरुषार्थ को देने वाला है। मनुष्य जीवन के 5 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम। और ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और प्रेम ये केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है और नहीं, और कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। तो अर्थदम, बहुत सुंदर अर्थ प्रदान करने वाला यह मनुष्य जीवन मिला है, इसलिए हे मेरे मित्रों, सभी लोगों को कुमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था से ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान विष्णु की नित्य निरंतर भक्ति करनी चाहिए। इतना प्रहलाद महाराज ने जब कहा तब दैत्य पुत्र कहते हैं कि हे प्रहलाद, आप कह रहे हो कि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, तो विष्णु की ही भक्ति क्यों करनी चाहिए? विष्णु से हमारा क्या नाता है, उससे हमारा क्या संबंध है? बताओ, हम विष्णु की ही शरण क्यों ग्रहण करें? तब इसका उत्तर देते हुए प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में कहते हैं, यथा हि पुरुषस्येह विष्णु पादोपसर्पणम् यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सृह। हे मेरे मित्रों, यथा ही इह पुरुष विष्णु पादोपसर्पणम्, हमें भगवान श्री विष्णु की शरण तुरंत ग्रहण कर लेनी चाहिए। कैसे? कहते हैं सर्पणम, सर्पणम का एक अर्थ होता है सांप की भांति, जिसे सांप की गति बहुत तेज होती है, यद्यपि उनके पांव नहीं होते हैं, वे पेट से चलता है, परंतु वो बहुत तेज चलता है, जैसे सांप बहुत तेज से चलता है, उतनी ही तेज गति से हमें भगवान विष्णु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। क्यों? क्यों? जब क्यों पूछा तो प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, यदेश सर्वभूतानाम प्रिय, क्योंकि वह भगवान विष्णु इस संसार में सभी लोगों के, सर्वभूतानाम प्रिय, सभी लोगों के प्रिय है। यह सत्य है, भगवान श्री विष्णु सभी लोगों के प्रिय है, अर्थात भगवान इस संसार में सभी लोगों को प्रेम करते हैं। इस संसार में सभी लोगों को भगवान हवा, पानी, प्रकाश इत्यादि दे रहे हैं, सभी जीवों के प्रति भगवान सुहद है, सभी जीवों का भगवान कल्याण चाहते हैं। और इस संसार में भी सब लोग भगवान कृष्ण को प्रेम करते हैं, लक्षित रूप से या अलक्षित रूप से। कुछ लोग भगवान को डायरेक्ट प्रेम करते हैं, कुछ लोग भगवान को इनडायरेक्ट प्रेम करते हैं। इस संसार में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करता है, प्रेम तब तक करता है जब तक भगवान उनके हृदय में है। इसलिए वास्तव में वह व्यक्ति उस शरीर से नहीं, उस शरीर में रहने वाले भगवान से प्रेम करते हैं। तो भगवान विष्णु की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वह प्रेम करने योग्य है। क्योंकि संसार में प्रेम करने मात्र, प्रेम करने के योग्य एकमात्र विष्णु है। यह सत्य है, इस संसार में हम सबको भगवान विष्णु से प्रेम करना चाहिए। परंतु कभी कभी देखा गया है कुछ लोग भगवान से, विष्णु से डरते हैं और भगवान विष्णु से डरकर भक्ति करते हैं। यह भी ठीक है, परंतु भक्ति की वास्तविक स्थिति यह है कि भगवान से प्रेम करें। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कलयुग में 523 वर्ष पूर्व इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि इस संसार में कुछ लोग उनकी भक्ति करते थे परंतु ऐश्वर्य भाव में करते थे, भय भक्ति करते थे। यही सोचते थे कि यदि हम कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाएंगे। परंतु महाप्रभु आए और संसार के लोगों को उपदेश दिए कि भगवान से, कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, वे प्रेम करने योग्य है और भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। कहते माता यदि पुत्र भावे करे न बंधन, अति हीन ज्ञाने करे लालन पालन। यदि कोई भगवान को पुत्र समझकर उन्हें डांटता है, उनका लालन पालन करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई कृष्ण को सखा मानकर कृष्ण के साथ खेलता है या कभी कभी उसे डांट भी देता है तो कृष्ण को बहुत आनंद मिलता है। और यदि कोई कृष्ण को प्रिय मानकर माधुर्य भाव में कृष्ण के साथ मान करता है तो कृष्ण को उसमें बहुत आनंद आता है। भगवान कहते हैं कि यह सब माधुर्य वात्सल्य साख्य भाव में जो लोग मुझे प्रेम करते हैं उसमें मुझे उतना आनंद आता है तो मुझे इस संसार में जय जगदीश हरे करने वाले ऐश्वर्यशाली भक्तों में भी नहीं आता है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान प्रेम करने योग्य है। इसलिए यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं यदेश सर्वभूतानाम प्रेम प्रिय। भगवान प्रिय है और प्रेम करने योग्य है। और इसी के साथ साथ आत्मा, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। विष्णु की भक्ति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वे परमात्मा है और परमात्मा के रूप में हम सबके पिता हैं। हम सब आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा का कर्तव्य है कि वे परमात्मा की सेवा करें। क्योंकि भगवान परमात्मा है इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। और विष्णु ईश्वर, ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर, क्योंकि वे इस जगत के कंट्रोलर हैं, इस जगत को चलाने वाले हैं, इसलिए विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को उत्तर देते हैं। और जब इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने कहा तब असुर बालक कहते हैं तो क्या संसार में खाने पीने या सुखी होने के लिए काम धंधा छोड़ देना चाहिए? हे प्रहलाद, आप कह रहे हो कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तो क्या हमको 24 घंटा भगवान की भक्ति करनी चाहिए, धंधा बिजनेस नहीं करना चाहिए? कई लोगों का यह प्रश्न होता है। प्रहलाद महाराज ने भक्ति के ऊपर बहुत जोर दिया और कहा कि अभी से ही शुरू करनी चाहिए। तो कहते हैं हमें सुखी होने के लिए धंधा बिजनेस क्या छोड़ देना चाहिए? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुखम मेन्द्रिय कम देत्या देह योगेन देही नाम। हे दैत्य पुत्रो, हे बालको, देह योगेन, जब किसी व्यक्ति को यह देह धारण होता है, जब यह देह मिलता है तो देह मिलने के साथ साथ ही यह तय हो जाता है कि इसे इसके जीवन में कितना सुख मिलेगा और कितना दुख मिलेगा। देही नाम कहते हैं। इस संसार में सब लोग देह धारण करने वाले हैं, तो यह देही जब इस संसार में जन्म लेता है उस दिन से ही उनका कर्म का फल तैयार हो जाता है, और नसीब के अनुसार देव अनुसार उसे सुख और दुख प्राप्त होता है। सर्वत लभ्यते देवा यथा दुखम यत्नत। तो वास्तव में सुखी होने के लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में यदि सुख लिखा है तो हमें निश्चित मिल जाएगा, देव योग से निश्चित हमें वह मिल जाएगा। यह सत्य है, हमारे कर्म में यदि धन लिखा है तो कैसे भी करके वह धन मिल जाएगा, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कि जिस दिन से यह शरीर मिलता है उस दिन से ही हमारा नसीब तैयार हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि किसी को विमान में सफर करनी है, फ्लाइट से सफर करनी है, तो जिस दिन से वह टिकट निकालता है उस दिन से ही वह तय हो जाता है कि फ्लाइट में उसे कैसा भोजन मिलेगा, वेज मिलेगा नॉन वेज मिलेगा, कैसी सीट मिलेगी, कौन सा कोच मिलेगा। तो जिस दिन टिकट निकालते हैं उसी दिन उसे क्या क्या मिलेगा वह जैसे निश्चित हो जाता है, वैसे ही जिस दिन व्यक्ति को यह देह मिलता है उसी दिन उनके जीवन में कितना सुख और दुख मिलने वाला है यह निश्चित हो जाता है, और देवा देव के अनुसार उसे सब प्राप्त होता है। तो जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। जैसे न चाहते हुए भी हमें दुख मिलते हैं वैसे ही न चाहते हुए हमें सुख मिल जाएगा। हमारे जीवन में लिखा है कि हमें यह भोजन करना है तो निश्चित वो मिल ही जाएगा, कर्म में लिखा है तो वो मिलना ही है। ऐसे ही एक बार एक गुरुजी प्रवचन कर रहे थे और शिष्य सुन रहे थे। प्रवचन के बाद शिष्य ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी नसीब में जो होता है वही मिलता है। गुरुजी ने कहा हाँ। तो गुरुजी बताओ कि कल मुझे भोजन में क्या मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि कल आपको भोजन में खीर मिलेगा। तब शिष्य ने सोचा कि गुरु को कैसे भी करके गलत साबित कर दूंगा, ये गुरु बहुत उपदेश करते हैं, कितने दिनों से उपदेश कर रहे हैं, कल कैसे भी करके मैं खीर नहीं खाऊंगा और गुरु को बता दूंगा कि आपका जो सिद्धांत है, आपका जो प्रवचन है बिल्कुल गलत है। तो दूसरे दिन गुरुजी ने कहा था कि कल के दिन में आपको आपके नसीब में खीर लिखी हुई है, कैसे भी करके खीर आपको मिल जाएगी। उसने सोचा कि गांव में और मंदिर में रहूंगा तो खीर मिलेगी, मैं जंगल में चला जाऊंगा। शिष्य सुबह उठकर जंगल में जाकर और जंगल में भी एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया कि यहां पर मुझे कौन लेने के लिए आएगा, छिप गया। धीरे धीरे सुबह हुई, दोपहर हुआ, तो उस जंगल के रास्ते से कई सारे गाय और बैल की रखवाली करने वाले वहां से निकले और कई सारी गाय बैल उनके साथ चल रहे थे। तो ये सब लोग जंगल के रास्ते से चल रहे थे और चलते चलते बहुत थक गए और ये सब लोगों को भूख लगी। भूख लगी तो ये जिस पेड़ के ऊपर छिपकर बैठा था उसी पेड़ के नीचे ये सब लोगों ने अपना डेरा डाला और कहा भूख लगी क्या बनाया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा हमारे पास चावल है, गाय हमारे पास है, गाय का दूध दो लेते हैं और दूध में चावल डालकर चीनी डालकर खीर बनाकर खाते हैं। ये जिस पेड़ के ऊपर बैठा था उसी पेड़ के नीचे आग लगाई गई, चूल्हा बनाया गया और उसके ऊपर पात्र रखा, दूध डाला, चावल डाला और चीनी डाली और वह शुरू किया बनाना। धीरे 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 वह खीर बन रही थी, ऊपर उसको खीर का धुआं आ रहा था लेकिन मन में यही सोच रहा था कुछ भी हो जाए खीर खाना नहीं है, गुरु जी को झूठ साबित करना है। धीरे धीरे 2-3-4 घंटा जब बीता तो उसी रास्ते से कई सारे लुटेरे निकल रहे थे और पहले के लुटेरे सब कुछ लूट लेते थे, धन भी लूटते थे, पशुओं को भी लूट लेते थे। लुटेरे निकले और यह सब लोगों को पता चला कि इसी रास्ते से यह लुटेरे आने वाले हैं, भागो भागो यहां से। यदि जान बचानी है और यह पशु धन को यदि हमें बचाकर रखना है तो खाने के चक्कर में मत पड़ो, सब लोग यहां से भागो। तो खीर तो वहां पर पकी हुई रह गई, खीर तो पक रही थी अपने आप, और ये सब लोग अपने पशु धन को लेकर भाग गए। और वहां से डाकू और डाकू के कई सारे आदमी घोड़े के ऊपर सवार होकर उसी रास्ते से आ रहे थे। आते आते ये जिस पेड़ के नीचे खीर पक रही थी वहां पर सब लोग खड़े रह गए और देखा कि यहां पर कुछ लोग आए हुए लगते हैं। तो डाकू का जो मंत्री था, सलाह देने वाला, उन्होंने कहा कि सरदार, यहां पर कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग को की साजिश लगती है। कुछ लोगों ने यह प्लान बनाया है कि इस खीर में कुछ लोगों ने जहर मिलाया है, और प्लान इस प्रकार से बनाया है कि हम लोग यहां पर आएंगे और आकर खीर खाएंगे और हम सब लोग मर जाएंगे। डाकू के सरदार ने कहा, सत्य बात है, हमको मारने के लिए ही यह खीर बनाई है और इस खीर में अवश्य किसी ने जहर मिलाया है। किसने मिलाया है ढूंढो यहां पर। सरदार ने सबको ढूंढने में लगा दिया, किसने जहर मिलाया खीर में, किसने मिलाया। सब लोग आजू बाजू में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति की नजर उस पेड़ के ऊपर गई जहां पर यह शिष्य छिप कर बैठा था। कहा, सरदार मिल गया, पेड़ के ऊपर बैठा है। सब लोग वहां पर एकत्रित हुए और उसने कहा, मैं नहीं उतरूंगा, अब तो कन्फर्म हो गया कि इसने ही जहर डाला है। दो तीन लोग ऊपर चढ़े और कैसी भी करके नीचे उतारा। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो परंतु खीर मत खिलाना। सरदार ने कहा कि निश्चित इसी ने जहर मिलाया है, खिलाओ इसे खीर। जबरदस्ती उसके हाथ बांधे गए, पांव बांधे गए और दो तीन डाकू ने मिलकर जबरदस्ती उसके मुंह में खीर डाल दिए। खीर डाला और देखा कि अब कुछ देर के बाद ये मर जाएगा, उसे छोड़कर ये लोग चले गए। परंतु वास्तव में उसमें जहर था नहीं। दूसरे दिन ये शिष्य अपने गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव के पास आकर गुरुदेव के चरणों में गिर गया। गुरुजी, आपने जो कहा था बिल्कुल सत्य है, न चाहते हुए भी, लाखों प्रयास करते हुए भी मेरे नसीब में खीर थी तो मुझे मिल ही गई। भक्तों, असुर बालकों ने प्रश्न पूछा कि सुख प्राप्त करने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नहीं, यदि हमारे नसीब में सुख लिखा है तो कैसे भी करके मिल ही जाएगा, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे नसीब में जो लिखा है निश्चित हमें मिलता है। परंतु यहां पर एक महत्वपूर्ण शब्द है, देवा। देव के अनुसार, देव का एक अर्थ होता है नसीब के अनुसार, और इसी के साथ साथ इसका दूसरा अर्थ होता है, हमें नसीब के अनुसार वस्तु मिलती है परंतु फिर भी उसे देने वाले देव अर्थात भगवान होते हैं। हमारे नसीब में जो है हमें मिलता है परंतु फिर भी उसे देने वाले भगवान है, और भगवान स्वतंत्र है। जैसे आपके कुछ रुपये, कुछ धन बैंक में है, वे धन आप ही का है, परंतु उस धन को यदि प्राप्त करना हो तो उस बैंक के कैशियर के पास जाना होगा। वो धन को कैशियर देगा, आप डायरेक्ट जाकर अपने धन को नहीं ले सकते हो। वैसे ही आप अपने नसीब को डायरेक्ट नहीं ले सकते हो, उसे देने वाले भगवान है। और किसने कैसा कर्म किया है और उसे कैसा फल देना है वह भी भगवान के हाथ में। इसलिए कर्म के अनुसार तो हमें मिलता ही है परंतु साथ साथ भगवान को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है। यह सिद्धांत श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन के प्रसंग में बहुत क्लियर होता है। जिसे समुद्र मंथन जब देवताओं और असुरों के द्वारा किया गया तो समुद्र मंथन के प्रसंग में अंतिम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं कि आप देखो, समुद्र मंथन देवताओं ने भी किया, असुरों ने भी किया, दोनों में शक्ति समान थी, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों ने मेहनत की, परंतु फिर भी दोनों की समान मेहनत और समान कर्म करने के बाद भी फल किसे मिला? देवताओं को। अमृत देवताओं को मिला। तो इस संसार में हम कर्म करते हैं परंतु वह कर्म का फल हमें मिलता है, परंतु देने वाले देव, प्रहलाद महाराज कहते हैं देव के अनुसार देने वाले भगवान हैं, इसलिए भगवान को प्रसन्न रखना है। तो मित्रों, सुख प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इस बात को और क्लियर करते हुए कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य। सुख प्राप्त करने के लिए तत्प्रयास न कर्तव्य, कुछ करने के कर्तव्य नहीं बनता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अत यत आयुर्वयो परम, और यह करने से क्या होगा, केवल आयु का क्षय होगा, केवल उम्र बीतेगी और कुछ नहीं होगा। जब इस प्रकार से हम प्रचार करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं तो क्या घर पर बैठकर सोना चाहिए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम काम धंधा बिजनेस छोड़ देवे। एक बार प्रभुपाद जी को यह प्रश्न पूछा गया कि यदि नसीब के अनुसार सब कुछ मिलना ही है तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो प्रभुपाद जी ने कहा करना चाहिए, परंतु करने में भी बुद्धिमानी है, हमें कितनी मेहनत करनी है। प्रभुपाद जी दृष्टांत देते हैं, जैसे गांव से किसी ने आपके लिए कुछ पार्सल भेजा, उस पार्सल में मान लीजिए 1,00,000 रुपये है, और गुजरात से या किसी गांव से किसी ने किसी कुरियर में पार्सल आपको भेजा, तो आपका कर्तव्य है कि आप घर से निकलो, कुरियर की कंपनी में जाओ और वहां से पार्सल लेकर घर पर आ जाओ। डायमंड वाले ठीक से समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी ने गुजरात से आपको आंगड़िया में डायमंड भेजा, तो प्राप्त करने वाले का कर्तव्य है कि डायरेक्ट वह आंगड़िया में जाए और उसे लेकर ऑफिस में आ जाए, बस इतना कर्तव्य करने की आवश्यकता है। परंतु कुछ लोग क्या करते हैं कि गांव से आने वाली सभी बस में जा जाकर देखते हैं यहां तो नहीं है, इस बस में तो नहीं आया, इस ट्रेन में तो नहीं आया, इस व्यक्ति के साथ तो नहीं आया, वहां तो नहीं आया। इतना उद्यम करने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर दृष्टांत है इस संसार में, सब लोग यहां से कमा लो, वहां से कमा लो, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा। अपनी बुद्धि को उद्विग्न और 24 घंटा इसी में पड़े रहते हैं। मेहनत कितनी करनी है, हमारे नसीब में जो है केवल उसे लेने के लिए जाना है। इसको और सरल भाषा में कहा जाए तो हमें किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, जैसे एक नौकर किसी मालिक के वहां नौकरी करता है, जैसे कोई नौकर मालिक के वहां नौकरी करता है, तो मालिक को कितना भी फायदा हो और कितना भी लॉस हो, नौकर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नौकर को तो जितना मिलने वाला है उतना मिल जाता है। वैसे ही हमें जितना मिलता है उतना मिल जाएगा, इसके लिए तत्प्रयासो न कर्तव्य, इसके लिए बहुत बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। और यदि हम परिश्रम करते हैं तो क्या मिलेगा, प्रहलाद महाराज कहते हैं एकमात्र यत आयुर्व्यय परम, उनकी केवल आयु का समाप्त होगा, उनकी आयु चली जाएगी, प्राप्त कुछ नहीं होगा। यदि आपके नसीब में 1,00,000 रुपये कमाना लिखे हैं तो 1,00,000 ही मिलेंगे, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा, कितनी भी मेहनत की जाए। तो फिर जितना नसीब में है उसको प्राप्त करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा परिश्रम भगवान की भक्ति में करना चाहिए। न तथा विंदन्ते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्, और इस प्रकार से यदि नहीं करोगे और केवल भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, पैसे कमाने के लिए पड़े रहोगे, तो मुकुंद कहते हैं कि वैसा करने से विंदन्ते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्, भगवान का चरण कमल नहीं प्राप्त होगा। जो लोग इस प्रकार से उद्यम में पड़े हैं, ऐसे उद्यम में पड़े रहने वाले लोग भगवान का चरण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उद्यम परिश्रम छोड़कर एकमात्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है और भक्ति ही करनी चाहिए। तब असुर बालक कहते हैं कब तक करनी चाहिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये भक्ति का कुछ पीरियड भी होगा ना। तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं ततो यतेत कुशल क्षेमाय भवमाश्रित शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम। भक्ति कब तक करनी चाहिए, जब तक इस शरीर का विनाश न हो जाए, जब तक इस शरीर में विपत्ति न आ जाए, तब तक हमें भक्ति करनी चाहिए। कहते हैं कुशल एक्सपर्ट विद्वान पुरुष ज्ञानी पुरुष तब तक भक्ति करता है जब तक इस शरीर पर विपत्ति नहीं आती। वास्तव में भगवान की भक्ति अंत तक करनी चाहिए, जीवन पर्यंत भक्ति होनी चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति भजन भक्ति नहीं करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन का और उनकी आयु का नाश होता है, प्रहलाद महाराज अब गिनती करके गिना रहे हैं। ये तो भक्ति जो करता है उसे जीवन भर भक्ति करनी चाहिए, और जो नहीं करते हैं उनके जीवन में क्या होता है? कहते हैं उनके जीवन में पुंसो वर्ष शतम आयु तत् अर्धम च अजित आत्मनः। कहते पुंस वर्ष शतम आयु, एक पुरुष की एक मनुष्य की उम्र कितनी होती है? शतम आयु, शतम का अर्थ होता है 100। वास्तव में 100 वर्ष भी नहीं है, केवल 70-80 वर्ष तक कोई जीता है, परंतु आप 100 वर्ष भी पकड़ लीजिए, यह मान लीजिए कि हम 100 साल तक जिएंगे, पुंस वर्ष शतम आयु। परंतु तत् अर्धम च अजित आत्मन, परंतु जो अजित आत्मन है, जो अजितेंद्रिय है, उनकी आयु कितनी है? कहते हैं तत् अर्धम, उससे बिल्कुल आधा। जो लोग जितेंद्रिय हैं उनकी आयु 100 साल की है, और जो अजितेंद्रिय है उनकी आयु कहते हैं 50 साल की। इसका अर्थ है अजितेंद्रिय का अर्थ है कि इस इंद्रिय पर वश नहीं है, इसलिए जो लोग 12-12 घंटे तक सोते रहते हैं उसे अजितेंद्रिय कहा जाता है। तो 100 साल की हमारी आयु है और हम 12 घंटा सोते हैं और 12 घंटा काम करते हैं। तो कुछ लोग कहेंगे हम तो 12 घंटा नहीं सोते हैं, हम तो 6-7-8 ही घंटा सोते हैं, परंतु बाकी के जिस घंटे में आप स्नान करते हो, खाते हो, पीते हो, यहां वहां घूमते हो, वह भी सोने में ही आ गया। इसलिए 12 घंटा हम सोते हैं, 12 घंटा जगते हैं। यदि हम 24 घंटे में से 12 घंटा सोते हैं तो हमारी आयु यदि 100 साल की है तो 50 साल तो सोने में निकल गया। देखिए प्रहलाद महाराज गिनती गिना रहे हैं, यदि 100 साल की आयु है 12 घंटा सोते हैं तो 50 साल सोने में निकल गया। कहते हैं निष्फलम यदसो रात्र्याम शेते अंधम प्रापिपस्तनम। और उस सोने में जो समय निकल गया उसमें व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, तमह अंधकार अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। सोकर कोई कुछ प्राप्त नहीं करता है, जगकर कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए यदि कुछ प्राप्त करना हो, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, प्राप्त यदि कुछ करना हो तो नींद कम करनी चाहिए। हमारे परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हो गए, ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज 24 घंटे में केवल 2.5 घंटा सोते थे। कहा जाता है वे शाम को 8 बजे सोते थे, रात को 10:30 बजे जग जाते थे। और मैजिस्ट्रेट थे, ब्रिटिश लोगों के सभी केस को सोल्व करने वाले थे। कहा जाता है 10 ब्रिटिशर्स को एक केस सोल्व करने में 1 महीना लगता था, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज उस केस को केवल 1 घंटे में सोल्व कर देते थे। इतने प्रवर थे, केवल 2.5 घंटा सोते थे। इसी के साथ साथ हमारे प्रभुपाद जी, उनके जीवनी में आया है वे भी केवल 2.5 घंटा सोते थे, बाकी के समय में पूजा आरती प्रचार और ग्रंथ लिखने का काम करते थे। और इतना ही नहीं, हमारे षड गोस्वामी रूप सनातन ये तो सोते ही नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन के भक्तों को पूछते थे मेरे रूप और सनातन क्या कर रहे हैं, तब यही उत्तर मिलता था अष्ट प्रहर भजन आरि चार दंड शयने। कहते हैं अष्ट प्रहर भजन करते हैं वे लोग, और जिस किसी दिन भजन में बहुत आनंद आ जाता है तो 2400 घंटा केवल भजन ही करते हैं। और क्या खाते थे? शुष्क रोटी चना चबाए, 5-10-15 दिन की सूखी हुई रोटी कभी मिल गई तो खाते थे, कभी सूखे चने मिल गए तो खाते थे, ये कुछ नहीं मिला तो 1-1 महीने में केवल छाछ पीकर अपना जीवन बिता देते थे। फिर भी उन्होंने अद्भुत अद्भुत ग्रंथों की रचना की। भक्ति सामृत सिंधु हरि भक्ति विलास इत्यादि। एक आचार्य बहुत सुंदर कहते थे, इतना भूखे भूखा रहने के बाद भी ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना किए, हम तो भोजन करके भी यदि ग्रंथ की रचना करने की बात दूर रही, ये लोगों के ग्रंथ यदि हम पढ़ भी लेंगे फिर भी हमारा उद्धार हो जाएगा, परंतु यह भी नहीं कर सकते। तो पुंस वर्ष शतम आयु, मनुष्य की आयु 100 साल की होती है और 50 साल सोने में बीत जाता है। अब आगे गिनती गिना रहे हैं, मुग्धस्य बालिये केशोरे क्रीडतो यानी विंशति। तो जो 50 साल बचे उस 50 साल में 20 साल किशोर अवस्था में या बाल्य अवस्था में खेलने कूदने में चला जाता है और उसमें मुग्धस्य, उसमें कोई विवेक बुद्धि नहीं होती। बालक को क्या विवेक और बुद्धि होती है, बालक का ध्यान एकमात्र खेलने में होता है, खेलने में आसक्त होता है। तो 50 साल बचे उसमें से 20 साल तो बचपन में खेलने कूदने में चले जाते हैं और जरयाग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशति, और बाकी के अंतिम के बुढ़ापे के 20 साल तो बुढ़ापे में बीतते हैं, जिस बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सुंदर गिनती गिना है, 100 साल की आयु है, 50 साल सोने में चला गया, बचे 50 साल, 50 साल में 20 साल बचपन में, 20 साल बुढ़ापे में, बचे केवल 10 साल। हमारे जीवन के 10 साल बचे जो हम जी रहे हैं, और उस 10 साल में क्या करते हैं, कहते हैं दूरा पूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापि याति। कहते हैं दूरा पूरेण कामेन, हृदय में काम बहुत कामनाएं उठती हैं, और कैसी कामनाएं उठती हैं, दूरा पूरेण जो कभी पूर्ण नहीं होने वाली है। इस संसार में सभी के हृदय में बहुत बहुत कामनाएं हैं और ऐसी कामना जो कभी पूरी नहीं होने वाली है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएंगे, कभी नहीं बनने वाले हैं, परंतु रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं और यही काम पहला करते हैं, बस इतना कमाएंगे इतना कमाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग का सोचना है अमेरिका जाएंगे, जीवन में कभी अमेरिका नहीं जाएगा लेकिन फिर भी उसके लिए रात दिन मेहनत करता रहता है। दूरा पूरेण कामेन, कैपेसिटी के बाहर जो कामना पूर्ण नहीं होने वाली है ऐसी कामनाओं में व्यक्ति पड़ा रहता है। और ये कामना क्यों पैदा होती है, कहते हैं मोहेन, मोह से कामना उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, और मोह का अर्थ है जब किसी व्यक्ति को माया का बंधन लगता है, जब कोई व्यक्ति भगवान से दूर होता है और माया में फंसता है, तो माया में फंसे रहने के कारण इस संसार में अनित्य वस्तु में नित्य बुद्धि कर लेता है, और अनित्य वस्तु में नित्य बुद्धि करने के कारण उसे मोह होता है, वे मोहित हो जाता है। फिर मोह होने के कारण मैं और मेरा प्रारंभ होता है, ये मेरा है, ये मैं हूं, और जब मैं आ गया तो फिर मेरे से जितने भी जुड़े हुए ये मेरे हैं, और मैं और मेरा जब प्रारंभ होता है तब राग और द्वेष उत्पन्न होता है। ये मेरा है और ये मैं हूं जब इस प्रकार से होता है तब कुछ लोगों के प्रति राग होता है, प्रेम होता है, और कुछ लोगों के प्रति द्वेष होता है, धुतकारते हैं। और ये ट्रेनों में बहुत देखा जाता है, आप सबका अनुभव होगा, चन्नी रोड से मान लीजिए कुछ एक साथ 4 जन चढ़े, 5 जन चढ़े, समझिए चन्नी रोड से एक साथ 5 जन चढ़े और ट्रेन में चढ़े तो ट्रेन में जो एक लाइन होती है उसे मिल गई, और जिस स्थान में 3 लोग ही बैठ सकते हैं ये 5 लोग ग्रुप में हैं तो एक साथ बैठ जाएंगे, किसी को गोद में बिठा लेंगे थोड़ा जगह करके, और 5 के बदले में 7 भी हो फिर भी बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राग है, सब हमारे हैं अपने हैं। परंतु मान लीजिए कोई अकेला व्यक्ति चढ़ा है और केवल 3 लोग सीट पर बैठे हैं और वे कहता है कि भाई साहब थोड़े अंदर जाइए मुझे बैठना है, तो अंदर जाने की बात तो दूर ही, केवल थोड़े थोड़े ऐसे हिलते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, ऐसे हिलकर फिर ऐसे बैठ जाते हैं। फिर वो दूसरी बार कहते हैं भाई साहब थोड़े अंदर जाइए, तीनों जन हिलते हैं जरूर, तीनों जन थोड़े थोड़े हिलते हैं, फिर वैसे ही बैठे रहते हैं। क्यों भाई, कल तो आप 7 लोग थे, 1 सीट में 7 बैठ गए, और आज चौथा बैठने आया है तो चौथे को लिए जगह नहीं है, क्यों? क्योंकि वो जो साथ थे वे अपने थे, हमारे ग्रुप के थे, और ये जो है पराया है। तो जब ये मैं की भावना आती है तो राग और द्वेष होने लगता है, अपने के प्रति, जो अपने हैं उसके प्रति राग, और जो दूसरे हैं पराये हैं उनके प्रति द्वेष होता है, और फिर इसी के साथ साथ कामनाओं का जन्म होने लगता है। और जब कामनाएं बढ़ती हैं तो व्यक्ति शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्त याप याती है। फिर इस कामनाओं को पूर्ण करने में, करोड़पति बनने में, अमेरिका जाने में उनका जीवन खाली हो जाता है, न तो वो करोड़पति बनता है और न तो वो अमेरिका जा सकता है, उनका जीवन शेष जो भी है वह समाप्त हो जाता है। कहते हैं को गृहेषु उपमान सक्तम आत्मानम जितेंद्रिय स्नेह पाशे दृढ़े बद्ध मुझ सहेत विमोचित। कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन अजितेंद्रिय पुरुष घर में आसक्त तथा स्नेह से बंधे हुए अपने दृढ़ बंधन से मुक्त हो सकता है? इस संसार में ऐसा कौन है जो पत्नी और पुत्रों के बंधन से मुक्त हो सकता है? कौन वर्त तुष्णाम विसृजेत प्राणे व्योपी यईप्सित यम क्रीणात्य सुभि प्रेष्ठे तस्कर सेवको वणिक। कहते हैं संसार में जितने भी लोगों के हृदय में कामनाएं हैं वे सब लोग धन में आसक्त हैं, सबकी आसक्ति धन में लगी हुई है, सब लोग यही प्लान मार रहे हैं कि धन कैसे मिलेगा। कहते हैं इस धन की आसक्ति से कौन मुक्त हो सकता है, कौन व्यर्थनाम तुष्णाम? क्यों? क्योंकि धन जो है, मनी जो है, हनी से भी ज्यादा स्वीट है। धन जो है बहुत अच्छा लगता है। और प्राणे प्यो अभी इप्सित, अपना प्राण देकर भी व्यक्ति धन को प्राप्त करने के लिए पड़ा है। धन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपना प्राण दे देगा, परंतु धन प्राप्त करने में पीछे हट नहीं करेगा। हम रोज देखते हैं विरार से हजारों लोग ट्रेन से आते हैं, कुछ लोग ट्रेन के गेट के ऊपर लटकते हैं, कुछ लोग ट्रेन के ऊपर बैठते हैं। कितना रिस्क है, इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं भाई? धन कमाने के लिए। कहते हैं धन कमाने के लिए अपनी प्राण की बाजी लगाने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं। धन में इतना उसे आनंद मिल रहा है, धन में इतनी आसक्ति है, और धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कुछ लोग फ्लाइट में सफर करते हैं, कुछ लोग बस में सफर करते हैं। इतना सब रिस्क लेकर भी सब लोग धन प्राप्त करने के लिए पड़े हैं। इसलिए हे मेरे मित्रों, आप सब लोग आज और अभी से कुमार अवस्था से ही भगवान विष्णु की भक्ति प्रारंभ कीजिए, नहीं तो बाद में भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बाद में आप भक्ति नहीं कर पाओगे। कहते हैं आज आप सब लोग जवान हो, आप सब लोग बालक हो, बच्चे हो, कल यदि आपका विवाह हो गया तो जैसे ही विवाह होगा तो भजन भक्ति सब छूट जाएगा। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर गिना रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगे रहस्य रुचिरांश मंत्रान सुहेत्सु तत्स्नेह सीत शिशु नाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त। कथम, कहते हैं कैसे भक्ति कर पाओगे, फिर तो आप बड़े हो गए, और अनुकंपिताया दया से युक्त एक प्रिया आपके घर पर आएगी, आपका विवाह होगा। और वास्तव में यदि कोई व्यक्ति किसी पत्नी के साथ विवाह करता है तो वास्तव में वह दया के योग्य है। एक पति की अपनी पत्नी के ऊपर स्नेह दया निश्चित होती है, और वास्तव में स्त्री दया के योग्य होती है, क्योंकि स्त्री जो होती है अपने संपूर्ण सभी परिवार को एक झटके में छोड़कर आ जाती है। वास्तव में स्त्री जो है समर्पण की मूर्ति है। जिस माता पिता के घर पर उनका जन्म होता है, लालन पालन होता है, और 15-20 साल तक जिस माता पिता के साथ रहती है, जब उसका विवाह होता है तो एक झटके में सबको छोड़कर आ जाती है। ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य, यदि हमें सीखना है तो यह स्त्रियों से सीखना होगा, किस प्रकार से सभी धर्मों को छोड़कर, सभी लोगों को छोड़कर एकमात्र पति की शरण में चला जाना। कहते हैं ऐसी स्त्री जब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर पर आएगी तो निश्चित उसके ऊपर दया होगी, प्रेम होगा। और जब ये सुंदर पत्नी आपके घर पर आएगी, ये बालकों को सुना रहे हैं, जब ये सुंदर पत्नी आपके घर पर आएगी तो संगम रहस्य रुचिरांश्य मंत्र, फिर तो अकेले कमरे में आप दोनों बैठोगे और बैठकर रहस्यमयी बातें करोगे। पत्नी प्रेम से मीठी वाणी में आपके साथ बात करेगी, आप पानी मांगोगे तो दूध का ग्लास लाकर देगी। ऐसी स्थिति में कथम कैसे भगवान याद आएंगे? यह होता है, विवाह होता है तो पत्नी बहुत सेवा करती है, परंतु एक दो साल के लिए। एक कवि बहुत सुंदर कहते हैं, जब पति पत्नी का विवाह होता है तो पहले साल पति बोलते हैं और पत्नी सुनती है, सभी आज्ञा का पालन होता है, और दूसरे साल पत्नी बोलती है और पति सुनता है, और तीसरे साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं दोनों का झगड़ा। खैर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब ऐसी पत्नी, दयावान प्रेमी पत्नी आपके घर पर आएगी, बेडरूम में बैठकर अकेले में एकांत में जब आप बातें करोगे, कल्पना करो कब कैसे भगवान याद आ सकते हैं, नहीं याद आएंगे, इसलिए कोमल आचरित अभी से ही भजन करो। और जैसे ही विवाह होगा तो सुहत सुत स्नेह सीत शिशु नाम, विवाह होगा तो तुरंत बच्चे होंगे, और जैसे ही बच्चे होंगे और वो बच्चे तोतली बोली में मम्मी और पापा कहेंगे, तब उस मम्मी और पापा सुनने में जो माता पिता को आनंद आता है वो तो वेदों के मंत्र में भी नहीं आता है। छोटे छोटे बालक जब तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, कहते हैं गृहस्थ जीवन के बस यही आनंद है, एक तो अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाना और दूसरा अपने पुत्रों की तोतली बोली को सुनना। जब ये छोटे छोटे बालक तोतली बोली में सुनते हैं, बोलते हैं और मम्मी और पापा बोलते हैं, और उसमें भी यदि कोई पिता या माता बालक को कंधे में लिया है और बालक उस माता और पिता के कान को खुजाने लगे, तब तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि ब्रह्मानंद भी उसके पीछे तुच्छ है। कहते हैं जब ये बालक आपको इतना स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे, कथम कैसे भगवान याद आएंगे। कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्त, फिर तो अब मेरे लड़के का एडमिशन करना है, यहां भेजना है, नर्सरी में भेजना है, कपड़े खरीदने जाना है, ये करना है, वो करना है, दवाखाने में लेकर जाना है, ये करना है, कहां से भजन कर पाओगे? विवाह होगा, बच्चे होंगे, और उसी के साथ साथ पुत्रान स्मरस्ताम दुहितु हृदया भ्रातुन ससुरवा पितरोच दीनो। और विवाह करके केवल पत्नी के साथ प्रेम नहीं करना पड़ेगा, उसके साथ साथ पत्नी के परिवार वालों के साथ भी प्रेम करना पड़ेगा। अब विवाह नहीं था तब तक तो एक माता पिता थे, एक ही चाचा थे, एक ही मामा थे, परंतु विवाह होने के बाद फिर दूसरे माता पिता, और फिर तो चाचा जी, मामा जी, वहां केवल चाचा नहीं चलेगा, जी कहना पड़ेगा। और पत्नी के जितने भी परिवार में जितने भी लोग हैं उनके साथ प्रेम करना पड़ेगा। अपने सगे चाचा से कम प्रेम करो नो प्रॉब्लम, परंतु पत्नी के जो चाचा हैं उनसे प्रेम करना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी नाराज हो जाएगी। भाई प्रहलाद महाराज कहते हैं कुटुंब बढ़ता जाएगा, पहले तो आप एक थे, फिर दो हुए, फिर बच्चे हुए, फिर पत्नी के जितने भी कुटुंब में रहने वाले हैं उनके साथ भी प्रेम बढ़ा, आपका संसार और विस्तार हुआ, और फिर ये जो आपके बच्चे हैं, गृहान मनोज्ञो रूपरिच्छदांश वृत्तिश्च कुलिया पशुभृत्य वर्गान। फिर उसके साथ साथ आपके घर पर कुछ पशु भी होंगे। पहले के जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग पशु रखते थे, घोड़ा ऊंट हाथी, परंतु आज पशु नहीं, आज तो मोटर कार मोटर बाइक रखते हैं। तो कहते हैं आपके घर पर गाड़ी मोटरसाइकिल और कार भी होगी, उसमें भी आपका कुछ प्रेम होगा। ये सत्य है, कुछ कुछ लोग तो अपने शरीर से ज्यादा भी अपनी गाड़ी से प्रेम करते हैं। कमलोचन प्रभु एक घटना सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति नई कार लेकर शोरूम से निकला और शोरूम से जैसे ही निकला तो एक दो किलोमीटर चला तो ट्रक वाले ने एक्सीडेंट कर दिया। ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया तो इतना क्रोधित हो गया कि कार से बाहर निकलकर ट्रक वाले को डांटने लगा, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो ट्रक वाले ने कहा कि आप हॉस्पिटल चलो, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर जाता हूं। उसने कहा नहीं, पहले जेल में चलो, पुलिस के पास चलो। तब उसने कहा कि देखो भाई, आपका हाथ कट गया है। तब उसे पता चला कि मेरा हाथ कट गया है। कहते हैं कि हाथ कट गया वह नहीं पता था, उसे अपनी गाड़ी की पड़ी थी। कुछ लोग अपने शरीर से अपनी गाड़ी के साथ ज्यादा प्रेम करते हैं। अपने शरीर में खरोच आ जाए नो प्रॉब्लम, परंतु गाड़ी पे एक भी खरोच आ जाए तो हृदय जलने लगता है। अरे बाप बहुत गलत काम हो गया। तो कुछ पशु कुछ गाड़ियों के साथ भी प्रेम होगा। और इस प्रकार से जब घर जंजाल में रहोगे तो धीरे धीरे आपके बच्चे बढ़ने लगेंगे, बड़े होंगे। फिर बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेज में एडमिशन दिलाना, आज तो स्कूल कॉलेज में एडमिशन दिलाना कितना दुखदाई है। आजकल स्कूल में 10-15 हजार रुपए लिए बिना कोई एडमिशन नहीं देता है, और उसमें भी बच्चों की फीस एक एक महीने में 2-2 हजार फीस होती है। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक स्टैंडर्ड में केवल 5 रुपया 10 रुपया देते थे, और आज एक बच्चे के पीछे एक महीने की फीस 2 हजार रुपया है। बेचारा गरीब व्यक्ति कैसे जी पाएगा? तो वे तो अपने बच्चे पत्नी और कुटुंब का भरण पोषण करने में ही रात दिन पैसे और धन कमाने में पड़ा रहेगा, भजन कहां से कर पाएगा? और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ एक पुत्र हुआ और एक लड़की भी हो गई। जरूरी नहीं है कि सबको लड़के ही होते हैं, लड़की भी होती है। लड़के लड़की दोनों बढ़ने लगे, लड़की जब बड़ी होती है तो उनका विवाह कराने का भी टेंशन कि अब इसका विवाह ढूंढो। तब कोई अच्छा लड़का मिलता है और विवाह हो गया उस लड़की का, तो फिर दूसरा टेंशन कि वह ससुराल में सुखी होगी कि नहीं। बस इस प्रकार से लड़की का टेंशन लेना, फिर लड़की के साथ संबंध रखना, इस प्रकार से बच्चे को बड़े करना, यह करते करते समाज का पालन पोषण करते करते तो ये बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होते ही कुछ दिन के बाद मृत्यु आ जाती है, भजन करने का कोई सोर्स नहीं रहता है। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि भाई साहब आप लोग भक्ति कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। तब कुछ लोग उत्तर देते हैं कि हम कैसे भक्ति करें, हम तो फंसे हुए हैं, हम तो एक घर गृहस्थी में समाज में फंसे हुए हैं। भाई तुम्हें फंसाने के लिए क्या ब्रह्मा जी आए थे? आप अपनी बुद्धि से फंसे हो, आप चाहते थे विवाह करने के लिए, कोई जबरदस्ती नहीं किया, कोई फोर्स नहीं किया। और कुछ लोग कहते हैं हम फंसे हुए हैं, परंतु व्यक्ति कैसे फंसता है? प्रहलाद महाराज दृष्टांत के साथ कहते हैं त्यजेत कोशस्तु दिवेह मान कर्माणि लोभान अनुतृप्त काम ओपस्त जेहम बहुमन्य मान कथम विरज्यत दुरंत मोह। कहते इस प्रकार से जंजाल में व्यक्ति वैसे फंस जाता है जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े को आप जानते हो, हमें पढ़ाई में पढ़ने लिखने में आता था। रेशम का कीड़ा जब अपने लिए घर बनाता है और रेशमी कपड़ा जो होता है, और रेशमी कपड़ा रेशम के कीड़े से बनता है, तो रेशम का कीड़ा अपने लिए जब घर बनाता है तो वह घर अपने ही मुख से निकली हुई लार ग्रंथि से बनाता है। और वे जब घर बनाता है तो अपने आजू बाजू में अपनी लार ग्रंथि को लगाते जाता है, लगाते जाता है, ईंट पत्थर कंकर दीवार बनाते जाता है और बनाते 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 एक दिन ऐसा घर बना लेता है कि वे अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है। अपने आजू बाजू में घर बनाते गया और बनाते बनाते वे अपने ही बनाए हुए घर में फंस गया। अब वे बाहर निकलना चाहता है फिर भी निकल नहीं सकता है। जैसे संसार के लोग, कोई कहा नहीं था विवाह करने के लिए, परंतु फिर भी वे किए और अपने ही बनाए हुए संसार में फंस गए। और निकलना चाहते भी हैं फिर भी नहीं निकल सकते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है, बहुत प्रयास करता है बाहर निकलू बाहर निकलू, बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी निकल नहीं सकता है, अंत में तड़पते हुए अपने प्राण को त्याग देता है और वह मर जाता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में वह तड़प करके मर जाता है, वैसे ही संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं भजन भक्ति से विमुख होकर अपने ही बनाई हुई घर गृहस्थी में फंसकर मर जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कुमार आचरित कुमार अवस्था से भजन करो, नहीं तो कुटुंब पोषाय वियन निजायु। कहते हैं केवल कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए अपनी सारी आयु बीत जाएगी। न बुद्ध तीर्थम विहितम प्रमत्त। संसार में देखा गया है कि व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए गधे और बैल की तरह मेहनत करता है, और अपनी पत्नी अपने बच्चे और अपने परिवारों का भरण पोषण करने के लिए न बुद्ध्यते अर्थम विहितम प्रमत्त। वे अपने स्वार्थ को भी नहीं जान सकता है, अपने कुटुंब की का भरण पोषण करने में इतनी मेहनत करता है कि वे अपने स्वार्थ को भी भूल जाता है। वास्तव में स्वार्थ, व्यक्ति का वास्तविक स्वार्थ क्या है, मैंने कल कहा था, स्व का अर्थ होता है हम स्वयं आत्मा, आत्मा के अर्थ के लिए आत्मा के लिए जो काम करे उसे स्वार्थ कहा जाता है, और आत्मा का स्वार्थ है भगवान की भक्ति। तो कुटुंब पोषाय वियन निजायु, कुटुंब का भरण पोषण करते करते इतनी उम्र बीत जाती है कि वे भगवान की भक्ति तक को भूल जाता है, अपने स्वार्थ को भूल जाता है। सर्वत्र तापत्रय दुखित आत्मा। और इतना ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि ये सब लोग गृहस्थी में कुटुंब में रहने वाले बहुत सुखी है, नहीं, यदि वे लोग सुखी होते भक्ति न करके सुखी होते तो कुछ लोग करते, परंतु इस प्रकार से कुटुंब का भरण पोषण करते हुए सर्वत्र तापत त्रय दुखित आत्मा, सभी जगह से उसे ताप ही मिलता है, दुख ही मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसे सुख मिले सभी जगह पर। आप देखिए, एक पति अपने पत्नी के लिए क्या नहीं करता है, इतना रिस्क लेकर ऑफिस जाता है, इतना पैसे कमाता है, इतना धन साड़ी गहना लाकर देता है, परंतु फिर भी पत्नी जीते जी एक बार भी ऐसा नहीं कहती है कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मैं आपकी दी हुई वस्तु से संतुष्ट हूं। एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करता है, लेकिन पुत्र एक बार भी नहीं करता, कहता है कि पिताजी बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे संतुष्ट हूं। पिता मर जाता है, गधे और बैल की तरह मेहनत करता है, फिर भी पत्नी और बच्चे उसे संतुष्ट नहीं होते हैं, देखा गया है। और वही पत्नी जिनके लिए यह मेहनत कर रहा है वही लोग उसे दुख दे रहे हैं। चाणक्य पंडित, शरीरे हरि प्रहरति स्वजनस्त हृदयस्तु वा। शत्रु तो शरीर पर वार करते हैं, परंतु ये कुटुंब पोषाय व्यन निजायु, जो व्यक्ति अपने स्नेही संबंधी पुत्र और पत्नी के लिए रात दिन मेहनत करता है वही लोग इस व्यक्ति को दुख देते हैं और हृदय पर वार करते हैं। फिर भी ये व्यक्ति कैसा है, निर्विद्यते न कुटुंब राम, फिर भी अपने कुटुंब को छोड़ नहीं सकता है, इतना परवश है, पता है कि यहां से दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, नर्वस हो जाता है, फिर भी उसे छोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि स्व कुटुंब राम, क्योंकि अपने कुटुंब में आसक्त है। भक्तों, कुछ लोगों को हृदय में ठेस लगती होगी, प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं यह नहीं कर रहा कह रहा हूं कि विवाह नहीं करना चाहिए, यह उपदेश नहीं दे रहा हूं कि बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि कुटुंब को छोड़ देना चाहिए, कुटुंब बहुत अच्छी चीज है, परंतु कुटुंब में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बच्चे दुख का कारण नहीं है, बच्चों में आसक्ति दुख का कारण है। पत्नी दुख का कारण नहीं है, पत्नी में आसक्ति दुख का कारण है। स्व कुटुंब राम, ये सभी जगह से दुख इसलिए भोगता है क्योंकि वे कुटुंब में आसक्त है, और कुटुंब में आसक्त रहने वाला व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं, वित्तेषु नित्या विनिविष्ट चेता विद्वांस दोषम परिवित्त हर्तु प्रत्येह चाथाप्य जितेन्द्रियस्तत अशांत कामो हरते कुटुंबी। ये कुटुंब में आसक्त रहने वाला व्यक्ति, कुटुंब का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति, अपने कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए पाप भी करना पड़े तो वह करता है। उसे पता है कि बिजनेस में, धंधे में झूठ बोलना पाप है, परंतु वह पाप कर लेगा, झूठ बोल लेगा, गलत काम कर लेगा। क्यों? पत्नी और बच्चों के लिए। परंतु यह मूर्ख इतना भी नहीं जानता है कि मैं जिसके लिए यह पाप कर रहा हूं, जब मुझे नरक में सजा मिलेगी तो ये लोग मुझे बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं। वे इतना आसक्त हो जाता है कि अपने वास्तविक स्वार्थ को नहीं जान सकता है। इसलिए विद्वान पित्थम दनुजा कुटुंब पुष्णस्व लोकाय न कल्पते वे यस्वीय पारक्य विभिन्न भाव तमह प्रपद्येत यथा विमुद्धा। और इस प्रकार से व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए पाप करते जाता है, करते जाता है, और पाप करते करते त्रमह प्रपद्येत, अंत में वे नरक में चला जाता है। इस प्रकार से भजन विमुख, केवल भौतिक भोग और कुटुंब में आसक्त व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। नरक में जाने से बचने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उस कुटुंब में भी प्रहलाद महाराज कहते हैं ज्यादा आसक्ति किस में होती है? कुटुंब में आसक्ति होती है, परंतु कुटुंब में भी ज्यादा आसक्ति यतो न कश्चित क्वच कुत्र चिद्वा दीन स्वमात्मा न मलम समर्थ विमोचितम काम दृशाम विहार क्रीड़ा मृगो यन निगड़ो विसर्ग। उस कुटुंब में भी सबसे ज्यादा आसक्ति अपनी पत्नी में होती है, स्त्री में होती है। और उस स्त्री और पत्नी की आसक्ति में बंध कर व्यक्ति अपने मां, जन्म देने वाली मां और पालन करने वाले पिता को भी त्याग देता है। इतना आसक्त बन जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नारी में आसक्त होकर व्यक्ति की कैसे हालत होती है? कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई नाचे नर मर कटकी नाई। जैसे मदारी के हाथ में बंदर नाचता है, वैसे इस संसार में स्त्री में आसक्त व्यक्ति स्त्री के हाथ का खिलौना बन जाता है, क्रीड़ा मृग ईव बंदर के समान नाचने लगता है। और स्त्री के हाथ में बिकने वाला व्यक्ति, स्त्री में आसक्त व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता है। और कहते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यदि इस कुटुंब में रहते रहते स्त्री में आसक्त हो गए तब भजन की बात तो दूर रही, आपको नरक में भी सबसे बदतर स्थान मिलेगा। स्त्री में जो आसक्ति है वो बहुत बेकार है। और स्त्री में यदि आसक्ति हो गई तब कोई व्यक्ति इस आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता है। स्त्री की आसक्ति से मुक्त होना बहुत मुश्किल है। और इस बात को भागवत के एकादश स्कंद में पुरुरवा महाराज एल गीत में इस बात को स्वीकार किए। एक चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी में मोहित हो गए और मोहित होकर उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तक स्वर्ग में रहने वाली उर्वशी के साथ संभोग किया। परंतु भगवान की कृपा से जब उसे वैराग्य हुआ तब वे बहुत सुंदर अपना अनुभव लिखते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट था परंतु स्त्री के हाथों का खिलौना बन चुका। ऐसे तो बहुत सुंदर बहुत बातें लिखे हैं, परंतु उसमें एक बात ये अवश्य लिखे है कि इस संसार में स्त्री की आसक्ति से कोई मुक्त नहीं करा सकता। व्यक्ति अपने आप तो स्त्री की आसक्ति से मुक्त हो ही नहीं सकता है, गुरु भी स्त्री की आसक्ति से किसी को मुक्त नहीं करा सकता है। स्त्री की आसक्ति से मुक्त कराने वाले एकमात्र भगवान है। तो स्त्री की आसक्ति में जो फंस गया वो तो कहीं स्थान नहीं पाएगा। इसलिए ये सभी कामनाओं से बचना चाहिए। ये सभी कामनाओं का मूल कारण क्या है? प्रश्न हो कि यह सब बातों में, यह सब चीजों में फंसने का कारण क्या है? प्रहलाद महाराज कहते हैं ततो विदुरात परिहर्त्य देत्या देत्येषु संगम विषयात्मकेषु। यह सब फजीहत में फंसने का एक ही कारण है कि हमें असत संग में फंसे हुए हैं। यदि भूल से भी साधु संग हो गया होता तो यह सब फजीहत में हम फंसते नहीं। परंतु दुर्भाग्य है कि कभी साधु का संग किया नहीं। संग करना हुआ तो बियर बार में जाने वालों के साथ, गुटखा खाने वालों के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ। भक्त का संग कभी किया नहीं, उसकी स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। और जिस दिन कोई व्यक्ति भक्त का संग कर लेता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, उसने असत संग को त्याग कर भक्त का संग करोगे तो यह सभी कामनाओं से मुक्त रहोगे। भक्तों, आज इस कथा का अंतिम दिन है। इस 7 दिन की सप्ताह में और कुछ लो या न लो, परंतु एक चीज तो अवश्य आप ग्रहण कीजिएगा। जीवन में यदि किसी का साथ करना है, जीवन में यदि किसी का संग करना है, तो वह भक्तों का संग कीजिएगा। क्योंकि आप कितने भी बड़े पापी हो, कितने भी बड़े कामी हो, भोगी हो, यदि भक्तों का संग हो गया तो निश्चित एक ना एक दिन उद्धार हो जाएगा। परंतु यदि भक्तों का संग नहीं हुआ तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग में बहुत ताकत है। भक्त का संग करने से व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। और इसी के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत संग को त्याग देना हो। इस संसार में मैं प्राय कहता हूं, एक व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार और संग होता है। यदि संस्कार और संग अच्छा मिला तो उसका उद्धार हो सकता है, परंतु संस्कार और संग ठीक से नहीं मिला तो उसका पतन हो सकता है। और आप यह मत समझो कि 1-2 मिनट के लिए गलत संग कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एक क्षण भी यदि गलत व्यक्ति का संग हो गया तो जीवन अधोगति की ओर जा सकता है। पुराणों में एक कथा आती है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया, बहुत बहुत शिकार को ढूंढा, परंतु शिकार मिला नहीं। तब अंत में वे थक कर एक पेड़ के नीचे आकर सो गया। पेड़ के नीचे सो रहा था, बरोबर दोपहर थी और हवा आने के कारण पत्ते थोड़ा भी हिलते थे तो प्रकाश उस शिकारी के सिर पर, मुख पर आता था, इसलिए उस शिकारी को नींद नहीं आती थी। शिकारी ठीक से सो नहीं पा रहा था क्योंकि प्रकाश, सूर्य प्रकाश आ रहा था। उसी समय वहां पर एक हंस उड़ रहा था। हंस ने देखा कि बेचारा परेशान है, इसलिए हंस उड़ते उड़ते उस पेड़ की डाली में आकर अपनी पंख को फैलाकर बैठ गया, जिससे उस शिकारी को धूप से बच गया। हंस आकर बैठा है, शिकारी चैन की नींद सो रहा है। उसी समय हंस के बाजू में एक कौवा आकर बैठा, और कौवे का तो स्वभाव आप जानते हो, कितना भी अच्छा स्टेच्यू रास्ते में लगाया जाए परंतु 2-3 महीने के बाद वे गंदा कर देते हैं। कौवा हंस के बाजू में आकर बैठा और उसने टट्टी 2 नंबर किया और बिल्कुल शिकारी के ऊपर ही गिरा। जैसे शिकारी के ऊपर वो कौवे का टट्टी गिरा, तुरंत शिकारी खड़ा हुआ। शिकारी खड़ा होते ही कौवा तो वहां से भाग गया, परंतु शिकारी ने अपने धनुष और बाण से उस हंस का वध कर दिया। हंस बेचारा मर गया, पेड़ से नीचे गिरा, मरा हुआ कराह रहा है। और जीवन की अंतिम क्षण में उस शिकारी को इतना ही कहा कि भाई साहब, मैं तो आपका भला करने के लिए, आपको अच्छी नींद आए इसलिए मैं यहां पर बैठा था, आपने मुझे क्यों मारा, मेरा क्या दोष था। शिकारी ने कहा कि आप अच्छे कुल के हो, हंस हो, आपका स्वभाव भी अच्छा है और आप अच्छे कार्य के लिए यहां पर आए थे, परंतु आपकी एक गलती है। क्या गलती है आपकी? एक गलती यह है कि आप यहां पर बैठे थे परंतु आपकी बाजू में जब वो कौवा आया तो आपको तुरंत वहां से उड़ जाना था। उस कौवे के साथ आप 1 सेकंड बैठे हैं, उस 1 सेकंड की कौवे की संगति के कारण आज आपको मरना पड़ा यहां पर। भक्तों, इस संसार में 1 सेकंड भी किसी का गलत संग हो गया तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा। जीवन एक बहुत बड़ा धोखा बनकर रह जाएगा। भागवत में एक नहीं हजारों दृष्टांत है। अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण था, नैष्ठिक ब्रह्मचारी था, 1 सेकंड के लिए गलत दृश्य देख लिया, उनका जीवन पूरा पाप में बदल गया। इसलिए असत संग से बचना चाहिए और भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और वे असुर बालक हमारी तरह नहीं थे। एक एक दो दो महीना, एक एक साल तक उपदेश करे और कोई भक्ति में लगता ही नहीं है। कन्विंस हो गए कि प्रहलाद आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, भगवान विष्णु की भक्ति करना बिल्कुल ठीक है और हम भक्तों का संग भी करेंगे, परंतु भगवान विष्णु की भक्ति कैसे की जा सकती है? भगवान विष्णु तो इतने महान है और आप देखते हो इस संसार में माया का प्रभाव है, हम किस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति करें? भगवान विष्णु की भक्ति करना तो बहुत मुश्किल लगता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान विष्णु की भक्ति करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कहते नहीं अच्युतम प्रणियतो बहिया बहुवा यासो सुरात्मजा आत्मवाद सर्वभूतानाम सिद्धवाद यह सर्वतः। भगवान विष्णु की भक्ति करना कोई मुश्किल ही नहीं है क्योंकि वे सभी लोगों के हृदय में हैं, सभी जगह पर अवस्थित हैं। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मांतरस्तवरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु अथ महत्सुच। और भगवान को कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, वे सभी जगह पर हैं। इस संसार में किसी व्यक्ति को ढूंढना है तो उसके घर जाना होगा, कहीं दूर दूर जाना होगा, परंतु विष्णु को ढूंढने की जरूरत नहीं, वे सभी महत तत्वों में है, सभी के शरीर में है, कण कण में है। गुणेषु गुण साम्यच गुण व्यति करे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरो व्यय। भगवान ईश्वर और परमात्मा सभी जगह पर उपस्थित हैं, इसलिए उनकी भक्ति करना मुश्किल नहीं है। प्रत्येगात्म स्वरूपेण दुष्य रूपेण च स्वयं व्यापक निर्देशो हनि निर्देशो विकल्पित। वे भगवान इस संसार में सभी जगह पर व्याप्त है और सभी को व्यापक है, इस प्रकार से भगवान सभी जगह पर हैं। भगवान की भक्ति करना कोई मुश्किल नहीं है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत कम वस्तु में प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं और सबको प्रसन्न करने के लिए तो बहुत बहुत करना पड़ता है, परंतु विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कोई मेहनत नहीं है। गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्म। यदि कोई मुझे पत्र पत्ता चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, फल चढ़ा दे या पानी चढ़ा दे, मैं प्रसन्न हो जाऊं। बताइए संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो दान मांगने के लिए आया है और हमने पानी पिला दिया और वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया? परंतु भगवान ऐसे हैं, केवल पत्रम पुष्पम फलम तो ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान के अलावा इस संसार में जितने भी लोग हैं उसे रात दिन मेहनत करो, पूरा जीवन निकल जाएगा, फिर भी प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। और संसार के लोगों की बात छोड़ दीजिए, देवी देवता भी तुरंत प्रसन्न नहीं होते हैं। यहां ब्रह्मा जी 36,500 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए, वहां शिव जी रावण ने 10 मस्तक काटकर यज्ञ कुंड में डाला तब प्रसन्न हुए, परंतु वही भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में सुदामा एक मुट्ठी चावल लेकर गए, प्रसन्न हो गए। एक मुट्ठी चावल अजामिल ने एक बार नारायण बोल दिया, प्रसन्न हो गए। भगवान बहुत कम से प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान के लिए बहुत करने की आवश्यकता नहीं। जीवन में जो भी कर रहे हैं वह करना ही है, परंतु उसके साथ साथ भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना बहुत मुश्किल नहीं है। तस्मात सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। परंतु उस बालकों ने पूछा कि भगवान को प्राप्त करना वो कठिनाई नहीं है और भगवान सभी जगह पर है, सभी जगह पर भगवान का वास है, तो भगवान दिखते क्यों नहीं है, जैसे संसार के लोग पूछते हैं। तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, केवल अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर माया यांत हित ऐश्वर्य इयते गुण सर गया। कहते हैं संसार में लोगों को भगवान का दर्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि वे सब लोग माया में फंसे हुए हैं। महारानी कुंती इस बात को बहुत क्लियर करती है, नमस्ते पुरुषम त्याज्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम। हे प्रभु आप कहां नहीं हो, अलक्षम सर्वभूतानाम सभी जीव के हृदय में हो, सभी कणकण में हो, अपने दाम में हो, अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम इस ब्रह्मांड के अंदर भी हो और बाहर भी हो, सब जगह पर हो, परंतु दुर्भाग्य है कि संसार के लोग आपको देख नहीं सकते। क्यों? कारण क्या है? संसार के लोग आपको क्यों नहीं देख सकते हैं? कहते हैं माया जवनी काचनम यादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूड दशा नटो नाट्य धरो यथा। भगवान सभी जगह पर होते हुए भी लोग उसे देख नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि सब लोग माया में फंसे हैं। माया रूपी आवरण आंख और बुद्धि के आगे, जब तक माया में फंसे हैं तब तक भगवान को नहीं समझा जाएगा। इसलिए इस माया से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? भगवान गीता में कहते हैं कि इस माया को पार करना समझना बहुत दुरूह है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, इस माया को कोई लांग नहीं सकता, परंतु यदि कोई मेरी शरण ग्रहण कर ले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। यदि कोई मेरी शरण में आ जाए तो बहुत तुरंत और जल्दी माया को पार कर सकता है। भगवान की शरण ग्रहण करनी है तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करना बहुत आसान है। और भगवान की भक्ति करते हुए तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृद भावमासुर मुन्मुंच्य यया तुष्यत् अधोक्षज। सभी जीवों के प्रति प्रेम रखते हुए, सभी जीवों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश देते हुए सबके प्रति प्रेम करना चाहिए, सौहृद करना चाहिए, और इससे अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी बालकों को बहुत सुंदर भगवान से भक्ति करने का उपदेश प्रदान किए। और प्रहलाद महाराज अंत में कहते हैं कि देखो, भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो फिर जीवन में क्या चाहिए आपको? आपसे केवल भगवान विष्णु का, एक भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए फिर कौन सी चीज की आवश्यकता रहती है? और विष्णु को छोड़कर पूरे संसार को प्रसन्न कर लिया आपने तो ये संसार आपको क्या दे सकता है? अरे मरने के समय पर एक सांस भी, एक सेकेंड भी ये पूरा संसार मिलकर जीवित नहीं कर सकता है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा दानी हो, कितना भी संसार का भला किया हो, परंतु जब उसकी मृत्यु आ गई है सारा संसार मिलकर भी एक मिनट भी उसे ज्यादा नहीं जिला सकता है, क्या फायदा है? इसलिए मानव नहीं माधव की सेवा होनी चाहिए, कृष्ण की सेवा, भगवान विष्णु की सेवा। मैं कोई मानव का दुश्मन नहीं हूं, मानव सेवा करनी चाहिए, परंतु सबसे उच्च सेवा है भगवान विष्णु की, कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा। आत्मा का परम धर्म है परमात्मा की सेवा करना। हाँ, यह शरीर का धर्म है, जिसने यह शरीर दिया है उनकी सेवा करें, परंतु शरीर का धर्म जब यह शरीर राख होता है तब समाप्त हो जाता है। आत्मा नित्य है, इसलिए आत्मा सनातन है, और हमारा सनातन धर्म है परमात्मा की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, इसे सनातन धर्म कहा जाता है। तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से अपने सहपाठी बालकों को उपदेश दिए, और उपदेश देकर जब वे शांत हुए तब ये सब पार्टी बालक प्रहलाद महाराज को पूछते हैं कि अरे प्रहलाद, इतना बड़ा ज्ञानी कहां से हो गया? लिखा है श्री दैत्य पुत्रा ऊचु, दैत्य पुत्र ने कहा प्रहलाद तुम वयम चापी नर्तेन्य विद महे गुरुम एताभ्याम गुरु पुत्राभ्याम बाल नाम अपीश्वरो। प्रहलाद इतना बुद्धिमान कहां से हो गया? कहा कि प्रहलाद ने कहा कि नारद मुनि से ज्ञान मिला है, ये ज्ञान मैंने जो आपको ज्ञान सुनाया ये मैंने मेरी बुद्धि से नहीं कहा है, ये ज्ञान पूरा बहुत पहले भगवान नारायण ने नारद मुनि को दिया था। नर नारायण जो बद्रीनाथ में विराजमान है वे नारद मुनि के गुरु हैं, और वही ज्ञान नारद मुनि ने मुझे दिया और नारद मुनि से प्राप्त करके मैंने आपको दिया। तो ये सब बालक पूछने लगे प्रहलाद ये नारद मुनि तुम्हें कहां पर मिल गए? जब तक हम जानते हैं तब तक इस गुरुकुल में तो कोई नारद फारद नहीं आए, और आपके पिताजी के घर पर नारद को आने का प्रश्न ही नहीं है, वहां तो इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि कोई विष्णु का भक्त आ ही नहीं सकता है। तो न तो गुरुकुल में नारद जी आए हैं, न तो आपके घर पर आए हैं, तो ये ज्ञान प्राप्त कहां से किया? तो यहां पर यह छठा अध्याय समाप्त हो जाता है। संक्षिप्त में आपको आगे की कथा कह दू। प्रहलाद महाराज अगले अध्याय में उत्तर देते हैं कि जब मेरे पिता हिरण्यकश्यपु 36,400 वर्ष तक तपस्या करने गए, तो पहली बार जब तपस्या करने मधुवन में गए, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है, मधुवन में गए वहां पर तपस्या करने खड़े हुए, तो उस समय शुक सारिका वशुक भगवान का नाम रटने लगा और भगवान का नाम रट सुनकर हिरण्याकश्यपु अपनी तपस्या में स्थित नहीं हो सका। इसलिए हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि कुछ दिन के लिए घर पर चला जाता हूं, बाद में तपस्या करने आऊंगा। हिरण्याकश्यपु घर पर आया, कयाधु ने पूछा, हिरण्याकश्यपु की पत्नी ने पूछा कि प्रभु आप तो बहुत लंबी तपस्या करने के लिए गए थे, इतने जल्दी वापस क्यों आ गए? हिरण्याकश्यपु ने कहा कि छोड़ो उस सब बात को। कयाधु ने कहा नहीं आप बताओ आप वापस क्यों आए? हिरण्याकश्यपु ने कहा कि वो मधुवन में गया था, वो दोनों शुक और सारिका दोनों तोते कुछ बोल रहे थे। कयाधु ने कहा साफ साफ बताओ ये क्या बोल रहे थे? हिरण्याकश्यपु ने कहा कि वो बोल रहे थे भगवान का नाम, लेकिन छोड़ो इस बात को। कयाधु ने कहा नहीं बताओ कि वो क्या बोल रहे थे, जबरदस्ती अब स्त्री हट के सामने किसकी चलती है? तीन हट प्रसिद्ध है, राज हट, बाल हट और स्त्री हट। तब अंत में हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मैं देखो मधुवन में गया और वहां जाकर जब तपस्या करने खड़ा रहा तो वह शुक वह तोता बोलने लगा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे।
शाम का समय और इसी महामंत्र के साथ हिरण्याकश्यपु मुंह से महामंत्र बोल रहा है और उसी समय हिरण्याकश्यपु के द्वारा कयाधु के गर्भ में एक बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है गर्भाधान संस्कार यदि ठीक से किया जाए तो बालक भक्त ही पैदा होगा। हिरण्याकश्यपु बहुत बड़ा असुर था, परंतु गर्भाधान विधि से गर्भाधान हुआ था, भगवान का नाम के साथ गर्भाधान हुआ, इसलिए उनके कयाधु से गर्भ से जो बालक प्रकट हुआ महाभागवत हुआ। और इसके बाद कथा आती है कि जब हिरण्याकश्यपु मंदार पर्वत पर 36,500 वर्ष तक तपस्या करने गया, इंद्र मौका देखकर कयाधु के पास आया, सोचा कि इसका पिता इतना बड़ा असुर है तो पुत्र तो आगे चलकर असुर बनेगा ही, इनकी मां गर्भवती है। तो इंद्र कयाधु को किडनैप करके स्वर्ग में जा रहा था, सोचा कि बालक का जब जन्म होगा उसे मार देंगे, कयाधु को भेज देंगे। इंद्र जब कयाधु को लेकर जा रहा था बीच में नारद मुनि मिले, कहा इंद्र ये क्या कर रहे हो? कहा कि इसके गर्भ में बहुत बड़ा असुर पल रहा है। नारद मुनि का असुर नहीं, इसे गर्भ में बहुत बड़े वैष्णव महाभागवत पल रहा है, ये आगे चलकर भक्ति का प्रवर्तन करेंगे, भगवान की सुंदर भक्ति करेंगे। इंद्र ने छोड़ दिया। वास्तव में इंद्र वैष्णव की महिमा जानते हैं। इंद्र ने उस समय कयाधु की तीन परिक्रमा की, प्रणाम किया और वहां से चले गए। यहां पर नारद मुनि ने कयाधु को कहा कि देवी आप क्षमा कीजिए और मैं आप पर प्रसन्न हूं, बताइए आपको क्या चाहिए? तब कयाधु ने कहा कि काम करो मुझे भागवत का ज्ञान सुनाओ। नारद मुनि कयाधु को अपने शिष्य की झोपड़ी में लेकर गए और वहां पर कयाधु ने सबसे पहले अपनी मांग की कि नारद जी यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे घर में जो बालक है ये बालक जब तक मेरे पति तपस्या करके वापस न आए तब तक उसका जन्म न हो। नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया और नारद मुनि के आशीर्वाद से प्रहलाद महाराज 36,500 वर्ष तक कयाधु के गर्भ में रहे और उतने समय तक नारद मुनि से लगातार भगवत कथा का श्रवण करते रहे। प्रहलाद महाराज ने कितने दिन शिक्षा प्राप्त की? कहते हैं गर्भ में 36,500 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए जन्मजात नैसर्गिक की रति थी उनकी, इसलिए महाभागवत परम भक्त और इतना सुंदर उपदेश भागवत में दे। तो इस प्रकार से प्रहलाद और सबका वार्तालाप, प्रहलाद महाराज प्रवचन कर रहे थे और ये षंड और अमरक अपने घर का काम लिपटा कर वापस आ रहे थे। आकर देखा तो प्रहलाद महाराज कई बालकों को प्रवचन कर रहे हैं। ये मन में सोचने लगे कि आज तक तो खुद भक्ति करता था, अब तो खुद स्वयं भी कर रहा है और दूसरों को कराने लगा। अब क्षण और अमरक मन में सोचने लगे कि यदि यह बात हमने सामने से हिरण्याकश्यपु को नहीं बताई और उसे किसी के द्वारा पता चला तो ये दोनों हमको मार डालेगा, हम दोनों को मार डालेगा, इसलिए अच्छा है कि प्रहलाद को लेकर जाए और हिरण्याकश्यपु के हाथ में सौंप दे। भागवत में वर्णन है, क्षण और अमरक प्रहलाद को लेकर हिरण्याकश्यपु के पास आए और हिरण्यकश्यपु के पास आकर शंड और अमर्क हिरण्यकश्यपु को प्रार्थना करते हैं। अब अगला प्रसंग जो है भागवत में बहुत लंबा है, परंतु इसी लीला को हमारे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी ने अपने काव्य में, अपने पद में बहुत सुंदर गाया है। सूरदास जी के शब्द में हम आगे की लीला की कथा सुनेंगे। शंड और अमर्क हिरण्यकश्यपु के पास आए हैं और आकर क्या कहते हैं,
हम तो बहुत भांति पछिहारे,
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 दीन तो राम
और अमर हिरण्यकश्यपु के पास आए हैं और आकर हिरण्यकश्यपु से प्रार्थना कर रहे हैं कि सरकार, हमने तो प्रहलाद को मनाने का बहुत प्रयास किया, बहुत बहुत प्रयास करने के बाद भी ये विष्णु का नाम लेना छोड़ नहीं रहा है। सरकार क्या बताए, ये खुद तो भजन भक्ति कर रहा है, ये खुद तो विष्णु का अनुचर बन चुका है, परंतु अब तो ये प्रचार करना शुरू कर दिया।
नृप कहियो मंत्र कछु आई, नृप
कहियो मंत्र कछु आई,
नृप कहियो मंत्र कछु आई,
नृप कहियो मंत्र कछु आई,
जहां तहां सोही करत सहाई,
जहां तहां सोई करत सहाई,
हिरण्यकश्यपु शंड और अमर को बाजू में कर दिया, प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद ये क्या कर रहा है तू, तुझे बार बार कहा है कि विष्णु का नाम मत ले और मैं तुझे बार बार मारने का प्रयास कर रहा हूं, फिर भी तू मर नहीं रहा है, क्या तू कोई मंत्र जानता है, कोई जादुई मंत्र जानता है, या तेरी सहाय कोई कर रहा है, तुझे कौन बचा रहा है, तुझे कौन जीवन दान दे रहा है, मुझे बता।
तो को कौन बचावत आई,
तो को न बचावत आई,
मैंने तुझे बार बार मारने का प्रयास किया, तुझे कौन बचाने आ रहा है ये मुझे बता।
तो को कौन बचावत आई, तो तू मोको दे बताई,
तो मोको दे बताई।
हिरण्यकश्यपु ने पूछा, प्रहलाद तेरी कौन रक्षा कर रहा है, तेरी रक्षा कैसे हो रही है, तब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं, प्रभु पिताजी, पिताजी मेरी रक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि मैं विष्णु का नाम ले रहा हूं और वे विष्णु घट घट में विराज रहे हैं, सब जगह पर हैं, इसलिए मुझे कोई नहीं मार सकता है।
मंत्र जंत्र में रे हरि नाम,
मंत्र जंत्र में रे हरि नाम,
मंत्र जंत्र में रे हरि नाम, घट घट में जा को विश्राम,
घट में जा को विश्राम,
घट घट में जा को विश्राम, जहाँ तहाँ सोही करत सहाय, सोते
जी मेरी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु है और विष्णु अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह पर है और इसीलिए मेरी सब जगह पर रक्षा हो रही है। अच्छा, तेरे विष्णु सभी जगह पर है क्या? यहां पर तेरे विष्णु है?
कहियो कहासो मोही बताई, कहियो कहाँ सो मोही बताई,
कहियो कहाँ सो मोही बताई,
ना करू तेरो जियो हूँ बचाई,
ना करू तेरो जियो हूँ
बचाई। प्रहलाद बता तेरा विष्णु कहाँ है? यदि तू आज तेरे विष्णु को नहीं बताएगा तो आज मैं तुझे जीवित मार दूंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यपु की नजर उसी समय जहां हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद खड़े थे बाजू में एक खंभे के ऊपर गई। महल में बहुत सारे खंभे थे, एक खंभे के ऊपर हिरण्यकश्यपु की नजर गई और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पूछा, क्या तेरा भगवान इस खंभे में है?
खंभे अब तो खंभहु कोई,
अब तो खंभहु कोई,
सो अब तोड़ खंभहु सोई,
अब तोड़ खंभहु सोई,
कहियो प्रहलाद आही तू कोई, कहियो प्रहलाद आही तू कोई,
कहियो प्रहलाद आही तू कोई।
उस समय हिरण्यकश्यपु पूछ रहा है, क्या इस खंभे में तेरा भगवान है, विष्णु है? वास्तव में विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, जो सभी जगह पर है। प्रहलाद ने कहा, प्रभु पिताजी केवल इस खंभे में ही नहीं सभी जगह पर है, अत्र तत्र सर्वत्र। भगवान यदि सभी जगह पर है तो इस खंभे में भी। जब प्रहलाद ने ऐसा कहा तब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आज मैं तेरे भगवान को देख लूंगा। हिरण्यकश्यपु ने मन में सोच लिया कि आज तो वो विष्णु नहीं या आज हिरण्यकश्यपु नहीं। मन में उत्साह है युद्ध करने का, भगवान को मारने की मन में ठान लिया और प्रहलाद ने कहा कि इस खंभे में मेरा भगवान है। उसी समय अवतार चरित्र के कवि लिखते हैं, वैशाख महीना वैशाख सुद चतुर्दशी, वैशाख सुद चौदश दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल। प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु खड़े हैं, हिरण्यकश्यपु बार बार पूछ रहा है, क्या इस खंभे में है तेरा भगवान? प्रहलाद एक ही उत्तर, हाँ इस खंभे में है मेरा भगवान। वैशाख सुद चौदश दिशा रवि होत अस्त संध्या ही काल, दग भग गति दहन भव अन बन रमन शमन भय पाय रतन बन, करन 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 हरन धन हरन हरन तन धन मन तन बन, करण कड़ धरणी कड़ हड़ड हड़ड ब्रह्मांड हले, हड़ड हड़ड ब्रह्मांड हले। वैशाख सुद चतुर्दशी परम पावन दिन, भगवान उस खंभे में नहीं थे परंतु अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंभे में प्रकट हुए और भगवान ने सोचा कि अब आज इस हिरण्यकश्यपु के अत्याचार का हद हो गया। बाहर हिरण्यकश्यपु खड़ा है, प्रहलाद को कर रहा है, हे भगवान इसमें? हाँ पिताजी। हिरण्यकश्यप धीरे 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 अपना कदम आगे बढ़ाया और वज्र के समान अपनी मुष्टिका को मोड़ा और वज्र के समान उस मुष्टिका के द्वारा उस खंभे के ऊपर प्रहार किया। हिरण्यकश्यप के प्रहार करते ही उस खंभे से भयंकर शब्द प्रकट हुआ और उस शब्द से ब्रह्मांड हिल गया। ब्रह्मा आदि अपने लोगों के ब्रह्मादि समझने लगे, इस ब्रह्मांड का प्रलय होने लगा। उसी समय देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए ऋषि मुनियों के पूजे हुए यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, देश में कटी हुई गायों का रक्षण करने के लिए, आर्य संस्कृति और ऋषि संस्कृति का रक्षण करने के लिए, अपने भक्त प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस धधकते हुए खंभे से प्रकट हुए। कहते जैसे ही भगवान उस खंभे से प्रकट हुए, खंभे को तोड़ दिए, भयंकर आवाज हुई। भगवान का रूप कैसा है सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। भगवान का रूप तपाए हुए सोने के समान, न नर न पशु, नरसिंह रूप धारण किए हैं। विकराल दाढ़ है, तलवार के समान लपलपाती हुई जीभ है, कान खड़े हुए, पहाड़ के समान गुफाओं के समान नाक है, भयानक मुख, विशाल छाती, कमर पतली, रोंगटे चंद्रमा के समान चमकते हुए, सेना के समान फैली हुई सहस्त्र भुजाएं, भगवान के नखुन वज्र के समान कठोर, आकाश को छूने वाला विकराल शरीर। भगवान ने जब अपनी गर्दन हिलाई, सारे बादल हिल गए और देवता आकाश में खड़े थे, देवताओं के विमान यहाँ से वहां होने लगे। जितने भी ग्रह थे, सारे ग्रहों की कांति फीकी पड़ गई। भगवान के श्वास के धक्के से समुद्र उद्विग्न हो गया, आज तक समुद्र उद्विग्न है। भगवान के सिंह नाद के भयभीत शब्द से दिग्गज कांप गए। उनके पैरों की धमक से भगवान नरसिंह देव धीरे 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 चलने लगे। जब वे चले, उनके चरणों की धमक से यह पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत उठने लगे। उसी समय हिरण्यकश्यप गदा लेकर भगवान नरसिंह की ओर चलते हुए आया। भगवान के हाथ में गदा है, हिरण्यकश्यप के हाथ में गदा है, दोनों के हाथ में गदा है और दोनों ओर से धमाधार युद्ध होने की तैयारी। कहते हिरण्यकश्यप पूर्ण स्फूर्ति के साथ भगवान नरसिंह देव की ओर दौड़ते हुए युद्ध करने के लिए आया, परंतु पहले ही प्रहार में जैसे गरुड़ किसी सर्प को पकड़ ले, वैसे भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप और उनकी गदा को सर्प के समान पकड़ लिया। परंतु हिरण्यकश्यप कोई साधारण देवता नहीं था, स्पेशल भगवान वीर रस का आस्वादन करने के लिए प्रकट कराए। भगवान के हाथ से छूट गया और छूटकर हिरण्यकश्यप निराश नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप के मन में उत्साह है, भगवान को मारने की चाह है, भयंकर युद्ध, भगवान को मारने के लिए तैयार, भगवान युद्ध करने के लिए तैयार। युद्ध छिड़ा और दोनों ओर की सेनाओं से प्रहार होने लगा। उसी समय भगवान ने देखा, भगवान बहुत बार युद्ध किए, बार बार एक दूसरे के प्रति गदा चलाते रहे और युद्ध करते 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 भगवान ने देखा संध्या का समय हुआ। संध्या का समय जैसे ही हुआ, जैसे ही भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारने का निश्चय किया, भगवान संध्या के समय हिरण्यकश्यप को मारने का निश्चय करते ही धरती फटने लगी, आकाश गरजने लगा, हिरण्यकश्यप के मस्तक पर गीत डोलने लगे, हिरण्यकश्यप के मस्तक से ताज गिरने लगा, भयंकर शियार की आवाज आने लगी। हिरण्यकश्यप को सभी ओर से अपशुकन होने लगे। हिरण्यकश्यप समझ गया कि आज मेरे जीवन का अंतिम दिन है। हिरण्यकश्यप का दाया अंग फड़कने लगा, ब्रह्मांड फटने लगा, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। उसी समय भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़कर चौखट के ऊपर बिठाकर अपनी गोद में सुला दिया। फिर सभा के दरवाजे के ऊपर हिरण्यकश्यप के जांघ के ऊपर जैसे ही भगवान ने उसे अपने शरीर पर सुला दिया, जैसे एक चटाई बनाने वाला घास के तिनके को फाड़ देता है, जैसे गरुड़ विषधर सर्प को फाड़ देता है, वैसे ही भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु के शरीर को फाड़ दिया। हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। नरसिंह देव भगवान की देवताओं के द्वारा जय जयकार हुआ। आकाश में देवता खड़े हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
भगवान के भक्त की विजय हुई है, भक्त की विजय में लाभ लीजिए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
बोल बैठे रहिए सब लोग।
Yeah.
अद्भुत सिंह धनिका हिरण्यकशिपु केशव धीता हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
नरसिंह देव जय नरसिंह नरसिंह देव भगवान की
जय।
भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की
जय।
तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और भगवान ने कलयुग के उस दुष्टों को दिखा दिया। कलयुग में कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग पत्थर की पूजा क्यों करते हो? पत्थर की पूजा, कहीं पर भी पत्थर को बैठकर आप उसकी पूजा करने लगते हो। परंतु उस दुष्टों को भगवान ने दिखा दिया कि यदि भाव हो, भक्ति हो, तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूं। भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिए। भक्तों, कथा तो बहुत लंबी है। वास्तव में भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता है। कुछ लोग 7 दिन में पूर्ण भागवत के ऊपर कथा करते हैं, परंतु वास्तव में वो पूर्ण नहीं होती हैं, वे संक्षिप्त में होती हैं। आपने देखा यहाँ पर 4 अध्याय की कथा, वह भी हमने ठीक से नहीं की। भागवत के एक एक श्लोक के ऊपर बहुत बहुत मनन किया जा सकता है, बोला जा सकता है। प्रत्येक श्लोक में भगवान और भगवान की भक्ति को भरा हुआ है। तो भक्तों, भागवत एक विशाल ग्रंथ है और जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। भगवान की कथा का कभी अंत नहीं हो सकता है, इसलिए बोलने चलो तो इस कथा का कोई अंत नहीं है। परंतु हम सब लोग कुछ समय की मर्यादा में बंधे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हम 7 दिन की भागवत सप्ताह को विराम करते हैं और सप्ताह को अंत करते समय आप सबके चरणों में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जिसे इस 7 दिनों में हम सब ने भक्तराज प्रहलाद महाराज की कथा श्रवण की, बहुत बहुत सिद्धांत, बहुत बहुत उपदेश हम सब लोगों ने श्रवण किए। उनमें मुख्य बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति किसी भी स्थान में, कैसे भी समय में भक्ति कर सकता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने की। और यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो निश्चित भगवान उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। तो भक्तों, हमारी रक्षा भी भगवान करेंगे। कलयुग में पदम पदम पर विपदा, कदम कदम पर विपद है। भक्तों, यह निश्चित नहीं है कि यहां से चलेंगे तो रास्ते में बम फूटेगा, एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भक्तों, इन 7 दिनों में हम सब ने बहुत बहुत श्रवण किया। मैं प्रायः मेरी कथा के अंत में एक बात कहता हूँ कि इस सप्ताह, इस कथा से आप लोग और कुछ लेकर जाओ या न जाओ, परंतु कृष्ण को अवश्य आप अपने साथ में लेकर जाइए। कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है और यदि कृष्ण हमारे साथ है तो जीवन में सर्वदा सर्वत्र हमारी विजय होगी। संजय ने धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुनाई। भगवत गीता का अंत करते हुए संजय अपनी कॉमेंट्री देते हैं कि हे धृतराष्ट्र जी, आपको जैसा लगे वैसा, परंतु मैं मेरे एक बात कहूं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवम नीति मतिर मम। मैं आपको राय दे रहा हूं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण होते हैं और जहां अर्जुन जैसे भक्त होते हैं, वहीं पर विजय होती है, वहीं पर जीत होती है, वहीं पर धन होता है, वहीं पर सुख होता है। भक्तों, यदि कृष्ण हमारे साथ हैं तो जीवन में सभी जगह पर हम विजय होंगे, चाहे ऑफिस में हो, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारी पढ़ाई में हो, चाहे भक्ति में हो। यदि कृष्ण हमारे साथ हैं हम विजयी होंगे, और कृष्ण यदि हमारे साथ नहीं है तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी हम हारे हुए हैं। प्रसिद्ध घटना भागवत के प्रथम स्कंद में सुनाकर अंत करना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण 128 साल यहां पर लीला करके जब अपने धाम में चले गए, जाते समय 16108 अपनी महेशियों को, पटरानियों को, उद्धव जी को सौंप कर गए और कहा कि अर्जुन जब हस्तिनापुर से द्वारका आएंगे तो अर्जुन को यह मेरी पत्नियों को सौंप देना, हस्तिनापुर में उसकी रक्षा करेंगे। भगवान ये सिद्धराधाम को छोड़कर चले गए और युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारका में भगवान कृष्ण की खबर लेने के लिए भेजा। अर्जुन आए हैं द्वारका और द्वारका में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण के धाम में निज धाम जाने का समाचार सुनाया। अर्जुन दुखी हुए और 16108 रानियों को अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ये सभी रानियों को लेकर द्वारका से हस्तिनापुर आ रहे थे। सभी रानियों को लेकर आ रहे थे, जंगल के मार्ग से जब वे आ रहे थे तो उस जंगल में अर्जुन को दो चार कोल भील के लड़के मिल गए, साधारण बालक, और अर्जुन का रास्ता रोक लिए, कहा कि आप यहां से नहीं जा सकते हो। और यहां तक अर्जुन के साथ युद्ध करके अर्जुन को हरा दिए और अर्जुन को हराकर उसको एक पेड़ के साथ बांधकर अर्जुन का गांडीर और धनुष सब कुछ छीन लिया। अर्जुन जिसके बारे में महाभारत, गीता और भागवत में देखिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की पोष पर थे। कुरुक्षेत्र की भूमि में करोड़ों लोग धनुष चलाने वाले में अर्जुन श्रेष्ठ, जिसके ऊपर द्रोणाचार्य का आशीर्वाद था। वह अर्जुन जो एक से एक सेनापति और एक से एक योद्धाओं के साथ युद्ध किए, मौत के घाट उतार दिए। वह अर्जुन, जो अर्जुन कुरुक्षेत्र की भूमि में विजय होकर लौटे हैं, उस अर्जुन को दो चार बालकों ने बांध कर रख दिया। वहां पर अर्जुन ने अपना पश्चाताप किया है कि हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा है अपनी वाणी से कि मैं वही अर्जुन हूं जिन्होंने कुरुक्षेत्र की भूमि में एक से एक राजा महाराजाओं को ऐसे रौंद डाला जैसे बाज छोटे छोटे पक्षियों को रौंद देता है। मैं अर्जुन हूं और मेरे पास वही गांडीर्व है जिस गांडीर्व के टंकार से शिवजी को प्रसन्न किया और पशु पशास्त्र धारण किया। मैं वही अर्जुन हूं जो द्रुपद की सभा में सभी राजा महाराजाओं का मान घटाकर द्रौपदी को जीत कर आया। मैं वही अर्जुन हूं जो एक से एक योद्धा महायोद्धाओं के साथ युद्ध किया। हे कृष्ण, ये वही अर्जुन है, ये वही गांडीर है और ये वही रथ है, फिर भी ये दो चार कोल भील के बच्चों ने आज मुझे हरा दिया। आज मुझे पता चला मेरे जीवन में आज तक जितना विजय हुआ, जितनी सफलता मिली, एकमात्र कृष्ण आपकी कृपा से। और आज आप नहीं हो, आपके नहीं रहने से इतना पराक्रमी अर्जुन एक दो तीन बालकों से हार गया। आज मुझे पता चला कृष्ण आपके कारण में जीवन में जीवित होता रहा। और यदि आप नहीं हो तो ये अर्जुन गांडीव होते हुए भी हारा हुआ है। सत्य बात है भक्तों, यदि विजय होना चाहते हैं, चाहे माया के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के ऊपर, भौतिक जगत, बिजनेस में या भक्ति में विजय होना चाहते हैं, कृष्ण को सदैव अपने साथ रखिए। बिना कृष्ण के अर्जुन भी कुछ नहीं है। कृष्ण को साथ में रखिए। कृष्ण को साथ में रखने का अर्थ है अभिन्नत्वा नाम नामनी। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यदि आप भगवान का नाम लेते हो तो भगवान सदैव आपके साथ रहेंगे। और इस कलयुग में भगवान के नाम लेने की विधि है, भगवान के वैसे बहुत नाम है, परंतु कलयुग में साक्षात भगवान ने प्रकट होकर कहा है कि विधि के अनुसार महामंत्र का ही जप करना चाहिए। सभी भक्तों के चरणों में निवेदन है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, जो 16 शब्द का नाम है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
कृष्ण को अपने साथ रखें, कृष्ण के नाम को साथ रखें, भगवान की भक्ति कीजिए, यही जीवन का सार है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार इतना कहते हुए, और इस 7 दिनों में कई लोग मुझे कहते थे, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए। ये सत्य है कि मुझ में आशीर्वाद देने की, कृपा देने की कोई शक्ति नहीं है, परंतु हमारे इष्ट देव श्री राधा गिरधारी जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, गौर निताय और प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि वे हम सब को उनकी शुद्ध भक्ति प्रदान करें और हम सब इसी जन्म में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाए। इसी के साथ साथ इन 7 दिनों में भागवत के 4 अध्याय के ऊपर कथा हुई। हो सकता है कि इस कथा में बहुत सारी त्रुटियां थी, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, पंडित नहीं है, विद्वान नहीं है। मैं आप सबके सामने यह स्वीकार करता हूं कि हम साधारण एक मूर्ख बालक हैं। प्रभुपाद जी के भागवत को पढ़कर, हमारे गुरु महाराज की कथाओं को सुनकर जो याद किया था, वे सब आपके सामने प्रस्तुत किया। यह सब प्रस्तुत करने में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो आप अपना दास समझकर, अपना पुत्र समझकर, अपना भाई समझकर हमें क्षमा कीजिएगा। आप सबके चरणों में क्षमा याचना चाहता हूँ। और भी कई लोगों को प्रसाद देने में दिक्कत होती थी, यहाँ पर कुछ लोग जल्दी आते थे, हमारे द्वारा लेट होता था। सभी की ओर से, इस मंच से, मैं सबके चरणों में कोटि कोटि क्षमा चाहता हूँ। और आप सभी भक्तों के चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको मुझे कुछ देना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए और आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सके, इस प्रकार भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर सके और भगवान की भक्ति में क्रमशः प्रगति करते रहे। हरे कृष्णा।